सप्तम परिच्छेदः इह हि प्रथमतः काव्ये दोषगुणरीत्यः अलङ्काराणाम् अवस्थितविक्रमो दर्शितः सम्प्रतीकेत इत्यपेक्षाम् उद्देश्य क्रमप्राप्तानाम् दोषाणाम् स्वरूपाः रसाकर्षका दोषाः अस्यार्थ प्रागेव स्फुटीकृतः तद्विशेषणाः ते पुनः पञ्चधा मताः पदे तदंशे वाक्यार्थे सम्भवन्ति रसेऽपि यत् दुःश्रवत्रिविधा अश्लीला अनुचितार्था अप्रयुक्तताः ग्राम्या अप्रतिसन्दिग्धे नेयार्थन्निहितार्थता अवाचकत्वम् किष्टत्वम् विरुद्धम् अतिकारितमतिकारित अविष्टमृष्टविधेयांश भावश्च पदवाक्ययोः दोषा केचित् भवन्तेषु पदांशेऽपि पदे पदे निरर्थका समर्थत्वे चित् संसकारता तथा परुषवर्णतया श्रुतिदुःखात्तवहत्वम् दुःक्षरत्वम् यथा कार्तार्थम् जातु तत्तन्वङ्गी कदा अङ्गवसंवदः क्लीडाजिगुप्सा अमङ्गलम् व्यज्यतत्वात् त्रिविधम् क्रमेणोदाहरणम् धृत्तारविजय राजनसाधनम् समुहत्त प्रशासारशनैहर विनाशे तन्विते तदा अत्र साधनवायो विनाशशब्दा अश्लीलाः शूरा अमरताम् यान्ति पशुभूता रणाध्वरे अत्र पशुपदम् कात्तर्यम् भिद्यन अक्तीनुचितार्थत्वम् अप्रयुक्तत्वम् तथा प्रसिद्धावपि कविभिरणादृतत्वम् यथा भाति पद्मसरोवरे अत्र पद्मशब्दः पुलिङ्गः ग्राम्यत्वम् यथा कटीयस्ते हरते मनः अत्र कटिशब्दो ग्राम्यः अप्रतीतत्वमे एकादशमात्रम् प्रसिद्धत्वम् यथा योगेन दलिशताशयः अत्र योगशास्त्र एव वासनार्थ आयशब्दः आशयशब्दः आशिः परम्पराम् बन्धाम् करणे कृत्वा कृपाम् कुरु अत्र बन्ध्याम इति किम् बन्दीभूताय उतम् बन्धनीयाम् इति सन्देहः नेयार्थत्वम् रूढिप्रयोजनाभावाद शक्तिकृतम् लक्ष्यार्थप्रकाशनम् यथा कमले चरणघातम् मुखम् सुमुखीते करोत अत्र चरणघातेन निर्यत्तत्वम् लक्ष्यम् नियमानुसारनिहितार्थत्वम् उभय अर्थस्य शब्दस्याप्रसीधे अर्थे प्रयोगः यथा यमुनाशाम्बरम् व्यतात्मीतम् संबरशब्दो दैत्ये प्रसिद्धम् इह तु जले निहतार्थः गीतेषु कर्णमादते अत्राङ्गपुरबोदाय धातुर्दानार्थनेवाचकः यथा वा दिनम् मे त्वयि सम्प्राप्ते ध्वान्तच्छापि यामिनि अत्र दीनम् इति प्रकाशमयार्थे वाचकम् क्लिष्टम् अर्थप्रतीतेर्व्यवहितम् तत्त्वम् यथा क्षीरोदयावतम् सती जन्मभूवः प्रसन्नाः अत्र क्षीरोदयाः लक्ष्मीस्तस्या वसतिः पद्मः तस्य जन्म भुवो जलानि भूतयस्तु भवानि सह अत्र भवानि शब्दो भवान्नयाः पत्यन्तरप्रतीतिः कारित्वा ध्वीरोद्मतीकृतः अविमृष्टविधेयशास्त्वम् यथा स्वर्गग्रामटिका बिलुकंठ बिलुंठन वृथोच्छुनैः किमे भीमयर्जुनैः अत्र वृथात्वम् विधेयम् तञ्च समासे गुणीभावाद् अनुभावाद्य तत्त्वात् प्रतिकृतितः यथा वा रक्षस्यांस्यपि पुनः पुरः स्थातु मलम् रामानुजस्य मे अत्र रामस्यति वाच्यम् यथा वा आसमुद्रक्षितिशानाम् अत्र असमुद्रम् इति वाच्यम् यथा वा यत्र ते पतति शुभ्रु कटाक्षपष्ठबाण पंच सरस्य अत्र षष्ठ्यम यथावा अमुक्ता भवता नाथ मुहूर्तामपि सापुरा अत्रामुक्त्रेयत्र नय प्रहस्य प्रतिषेधत्वम् इति विधेयत्वमेव वोचितम् यदाहु अप्रधान्यम् विधेयत्र प्रतिषेधे प्रधानता प्रसज्ञा प्रतिषेधौ वशौ क्रियायाशः यत्र न यथा न जलन्धरः सन्योद्वयोऽयम् न दृप्तनिशाचरः उदोहर उक्तो दाहरणे तु तत्पुरुषसमासे गुणीभावे नै पर्युदासतया निषेधस्य विधेयतयानवगमः यदाहु प्रधानत्वम् विधुर्यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता पर्युदासः स विज्ञेव यत्र उत्तरपदेन नय तेन जुगुप्त आत्मानम् अत्रस्त्रो भेजे धर्ममनातुरः अग्रिद्धुनुराददेशो अर्थान्नक्षत्रः सुखमन्वभूतः अत्रास्त आद्यनुधामे आत्मनो गोपनाद्यैव विद्यम इति नय पर्युदासतया गुणीभावयुक्तः ननु अस्राद्भोजित ब्राह्मणः असुर्यस्पस्या राजद्वारा इत्यादिवत् अमुक्ता इत्यत्रापि प्रसज्य प्रतिषेधो भव तीति चेतन अत्रापि यदि भोजनादिरूपक्रियांशेन नयसम्बन्धः स्यात्तदैव तत्र प्रसज्य प्रतिषेधत्वम् वस्तु सत्यम् न च तथा विशेषतया प्रधानेन तद्दोज्यर्थे कर्तृत्वसेनैव नयसम्बन्धनात् यद्दाहो श्रीमदो भोजनशीलो हि यतः कर्ता प्रतीयते न तद्भोजनमात्रम् तु कर्तुरे निर्विधानतः इति अमुक्ता इत्यत्र तु क्रियैव सह सम्बन्ध इति दोष एव एते च क्लिष्टत्वादयः समागता एव पददोषाः वाक्ये दुःस्रवत्वम् यथा स्मरा रात्यर्यन्धः कदालप्यस्य कर्तार्थे विरहे तव कृत्प्रवृत्ति अन्यार्थे कवेर्वान्तम् समुन्नुते अत्र जिगुप्सा व्यञ्जकाश्लीलता उद्धत्कमल लौहित्यैक्राभिर्भूषिता तनुः अत्र कमलौहित्यः पद्मरागः वक्राभिर्वा माभिः इति नेयार्थता धम्मिलस्य नकस्य प्रेक्ष निकामम् कुरङ्गशावाक्षया रज्जत्यपूर्ववन्धुपतिर्यमानशम् शोभाम् अत्रधम्मिलस्य शोभाम् प्रेक्ष कस्य मानसम् न रज्यतीति सम्बन्धः क्लिष्टः न्यकारो ह्यमेव मे यतैति अत्र चायमेव न्यङ्कारः इति नयकारस्य विधेयत्वम् विवक्षितम् तच्च शब्दरचना वैपरीत्येन गुणीभूतम् रचना च पदवद्वयस्य विपरीते इति वाच्यदोषः आनन्दयति ते नेत्रे योऽसौ शुभ्रूष्वमागतः इत्यादिषु यदयो नित्यः सम्बन्धः इति न्यायादुपक्रान्तस्य यक्षशब्दस्य निराकाङ्क्षत् प्रतिपत्तये तच्छब्दः मानार्थतया प्रतिबन्धात्मना इदम् एतद् शब्दाभिधेया एवम् भवितुम् नियुक्ताः अत्र तु यक्षनिकटस्तया अनुवाद्यत्वप्रतिकृतितम् तच्छब्दः स्यापि याक्षशब्दनिकटेस्थितस्य प्रसिद्धज्वपराम अस्थितत्वम् मात्रम् यथा यः स ते नयन्नान्दकरः शुभ्रो शयागतः यक्षशब्दव्यवधानेन स्थितास्तु निराकाङ्क्षत्वम् अवगम्यति यथा आनन्दयति ते नेत्रेषु अधुनासौ समागतः एवमिद्मा दिशब्दो अपि अपादाने अपि यत्र च यदत्तेर कस्यार्थत्वं संभवति तत्रैकस्योपपादाने अपि निराकांक्ष प्रतीति अपि न क्षतिः। तथा हि यक्षशब्दस्य उत्तरवाक्यगतत्वेनुपादाने सामर्थ्यात् पूर्ववाक्ये तच्छब्दस्यार्थत्वं यथा आत्मा जनाति यत् पापम् एवं यं सर्वशैलाः परिकल्प्यं वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरे दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महौषधिश्च इत्यादपि तच्छब्दस्य प्रकारान्तप्रसिद्धस्य अनुभूतार्थत्वे यक्षशब्दार्थत्वं कर्मणा यथा कर्मेण यथा सहत्वा बालिनं विरस्तस्तत्पद्ये चिरकाङ्क्षीते धातुः स्थानैवादेशं सुग्रीवसन्न्यवेशयत् सः वः शशिकलामौलिस्तादात्म्योपकल्पताम् तामिन्दुरसुन्दुरमुखी। यदि चिन्तयामि यत्र च यक्षशब्दनिकटस्थिता नाम समीपम् अमादिशब्दानां भिन्नलिङ्गं विभक्तित्वं तत्रापि निराङ्कक्षत्वमेव क्रमेण यथा विभाति मृगवाक्षासि वा मृगसावाक्षि येदं भुवनभूषणम् इन्दो विभाति आस्तेन दग्धां पथिकयोषितः क्वचिद् अनुपातयोर्यद्वयोरपि सामर्थ्यवागमः यथा नमे शमयिता कोऽपि भारस्य यूरि माशुचः नन्दस्य भवने कोऽपि बालोऽस्तस्य पौरुषः अत्र सोऽस्ति सति भारतस्य समयि तेति बुध्यते। यद्य विरह दुःखं मे तत्को वा हपरिष्यति इत्यत्रैक यक्षब्दस्य शङ्काक्ष इति च वाच्यं तथा हि यद्यनेन केनचिद्रेण रूपम् इष्ठितं सर्वात्मनं वस्तु विदक्षितं तथा भूतस्य तस्य तत्शब्देन परात्मर्षः एवमन्यस्वामपि वाच्यगत्वेन उदाहरणं बोध्यं पद्यांशे त्रुटिकटुत्वं तथा तदगच्छसिद्धय्य कुरुदेव कार्यं धातुमतां धीरीयते। अत्र मताः शब्दः क्षिद्रार्थे निहतः वर्णयते किं महाशेनो विजयो यस्य तारकः अत्र विजय इति कृत्यप्रत्ययः कतप्रत्यार्थे वाचकः संग्रामे निहतासूर सौरि पाणिः पल्लवशब्दस्याद्याक्षरे असलीले संग्रामे निहतासुराः वचो बाणत्वमागताः। अत्र स वचः शब्दस्य गीः शब्दवाचकत्वे नेयार्थत्वम् तथा तत्रैव बाणस्थाने सरेति पाठे। अत्र पदद्वयम् अपि न परिवृतिसहम् जलध्यादौ तुत्तरपदम् बाणवानलादौ पूर्वपदम् एव मन्येऽपि यथासम्भवम् पदांशदोषाः क्याः निरर्थकत्वादिनाम् त्रयाणाम् च पद्मार्थकत्वेनैव लक्ष्ये सम्भवः क्रमतो यथा मुञ्चमानं हि मानिनि अत्र हि शब्दो वृत्तिपूर्णमात्रप्रयोजनः कुञ्चहन्ति कृशोदरी अत्र हनन्ति इति गमनार्थे पठितमपि न तत्र समर्थनम्। गाण्डीवी कनकशिलानिभम् भुजाम्या जघ्ने विषम् विलोचनस्य वक्षः आङ्गोयमहनः स्वाङ्ग कर्मकाश्च इत्यनुशासनम् बलादाह अङ्गपूर्वस्य हन् स्वाङ्गकर्म अस्यैव वात्मनेपदम् नियमितम् इह तु तिलाङ्गिम इति व्याकरणम् लक्षणहीनत्वादच्युतसंसकारत्वम् नन्वत्र आज्यद्यने इति पदस्य स्वतो न दुष्टता अपि तु पदान्तरपेक्षस्यैव इत्यस्य वाक्यदोषतामेवम् इत्तथा हि गुणदोषालङ्कारणम् शब्दार्थगत्वेन व्यवस्थितेस्तस्य अन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वम् हेतुः इह तु दोषस्य आजग्ने इति पदमात्रस्यैव वान्यव्यतिरेकानुधानविधायित्वम् पदान्तरेण परिवर्तनेऽपि तस्य तादवस्थयात् इति पददोषः एव तथा यथेह आत्मनेपदस्य परिवृत्ता वपि न दोषः तथा हन् प्रकृतेरपिति न पदांशदोषः एवं पद्य इत्यत्राप्रयुक्तस्वस्य पद्गतसत्त्वं बोध्यम् एवं प्रकृतदिव्याकरणं लक्षणाहन् उपतिच्युत संसकारत्वं महयम् यं तु शब्दानां सर्वथा प्रयोगाभावे समर्थत्वं विरल प्रयोगे निहतार्थत्वं निहतार्थत्वं अनेकार्थशब्दविषयम् अप्रतीतत्वं त्वेकार्थस्यापि शब्दस्य सार्वत्रिक प्रयोगाविरह अप्रयुक्तम् एव एकार्थशब्दविषयम् असमर्थत्वेन दर्शविषयम् असमर्थत्वे हन्त्यादौ गमनार्थे पठिताः अवाचकत्वे दिनादयः प्रकाशम् याद्यर्थे न तथेति परभेदः पददोषसजातीया वाक्यदोषाः उक्तिः सम्प्रति तद्विजातीयाः उच्यन्ते हिन्दी स्मित प्रमाभिः प्रभवन्ति यस्य कटाक्ष विक्षेपवस्तान् निशन्तिः जगन्ति यन्ति भृकुटि विलासे अप्यं मन्द मन्दानमानमन्द महत्तमिद्यः इह इति। प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण के अवसर पर दोष गुण रीति और अलंकारों की स्थिति का क्रम कहा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इस कारिका में काव्य का लक्षण कहा है और दोषास्तस्यापकर्षकाः उत्कर्षः हेतवः प्रोक्ता गुणालंकारकारतीयः। इसमें दोषादिकों के क्रम का भी निर्देश है। पिछले अंक ग्रंथ में काव्य का स्वरूप और उसके सब भेद कहे जा चुके हैं और दोषों का वर्णन क्रम प्राप्त है। अतः पहले दोष का सामान्य लक्षण करते हैं रसाप इति। रस के अपकर्ष अर्थात रस की हीनता का विच्छेद के जो कारण है वे दोष कहलाते हैं। दूषयति काव्यम इति दोषः ब्रैकेट जो काव्य को दूषित करे और वह दोष ब्रैकेट बंद। इस व्युत्पत्ति के अनुसार श्रुति कटुत्व आदि को दोष कहते हैं। रम्यते इति रसः यह रस शब्द की व्युत्पत्ति प्रथम परिच्छेद में कही है। इसके अनुसार जहाँ यहाँ रस शब्द से रस की अतिरिक्त रसाभास भाव और भावाभास की भी गृहित होती है। रस का अपकर्ष तीन प्रकार का होता है। एक तो रस की प्रतीति अर्थात रसास्वाद के रुक जाने से, दूसरे रस की उत्कृष्टता का विघातक किसी वस्तु के बीच में पड़ जाने से, तीसरे रसास्वाद के विलम्ब करने वाले कारणों में उपस्थित होने से। इनमें से कोई लक्षण जिसमें मिले हुए वही दोष कहता है। प्रश्न श्रुति दुष्टत्व अपूर्णार्थत्व आदि में उक्त लक्षण नहीं प्रसंगत होता है क्योंकि उनमें से कोई केवल शब्द से मेल रहता है और कोई केवल अर्थ में, रस के साथ किसी का संबंध नहीं है। इसका उत्तर देते हैं अस्य इति। इसका अर्थ पहले ही प्रथम परिच्छेद में स्पष्ट कर चुके हैं। श्रुति दुष्टत्वादिक दोष शब्द और अर्थ के द्वारा काव्य में आत्म स्वरूप रस का अपकर्ष करते हैं। यह बात वहाँ कही है। तद विशेषण इति दोषों के भेद कहते हैं। ते पुनर इति पद पद्यांश वाक्य अर्थ और रस में रहने के कारण दोष पांच प्रकार के माने जाते हैं। दुस्रवस इति दुस्रत्व तीन प्रकार की अश्लीलता अनुचितार्थत्व अपर्युक्तत्व ग्राम्यत्व अपरित्यक्तत्व असंदिग्धत्व न्यायार्थत्व निहतार्थत्व अवाचकत्व क्लिष्टत्व विरोधत्व मतिकारित्व और पदगत तथा वाक्यगत अविस्मृष्ट विधेयासंसत्व ये सब दोष हैं। इनमें से कुछ दोष पदांशों में भी रहते हैं और अधिकांश दोष पदों में रहते हैं किंतु निर्थकत्व असमर्थत्व और च्युत संस्कारत्व ये तीन दोष केवल पदों में ही रहते हैं पदांशों में नहीं। यथाक्रम इनके लक्षण और उदाहरण हैं जैसे कर्तार्थ तथ र के संयोग से इस शब्द में कठोरता आई है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से काव्य में उत्पन्न हुए दोष को दूसरा सत्व श्रुति कटित्व या श्रुति दुष्टत्व कहते हैं। प्रश्न, कर्तार्थत्य शब्द के पिछले दो अक्षरों में रेफ का संयोग है। पहला अक्षर का को कोमल ही है तो फिर समस्त पद श्रुति कटु कैसे हुआ? पद का एक अंश दूषित है अतः इसे पदांश दोष मानना पद दोष नहीं है। उत्तर, जैसे वाक्य में दो तीन पदों के दूषित होने पर समस्त वाक्य दूषित माना जाता है, इसी प्रकार पद में भी अधिकांश के दूषित होने पर पद दोष माना जाता है। जहाँ आधा या उससे कम अंश दूषित हो वहाँ पदांश दोष माना जाता है। श्रुतवत्वम दोष शब्द को दूषित करता हुआ श्रृंगार आदि कोमल रसों की उत्कृष्टता का विघातक होता है, अतएव यह कोमल रसों में ही दोष है। वीर रौद्र आदि उग्र रसों में इसका होना गुण है, इसी कारण यह दोष अनित्य माना गया है। अश्लीलत्वम इति जो असभ्य अर्थ का व्यंजक करे उसे अश्लील कहते हैं। लज्जा घृणा और अमंगल का व्यंजक होने से अश्लीलत्व तीन प्रकार का होता है। क्रमेण इति क्रम से उदाहरण देते हैं। दृप्त इति हे राजन मदांध शत्रुओं को विजय कराने में तुम्हारा साधन बहुत बड़ा है। यहाँ साधन शब्द से लिंग रूप लज्जाजनक अर्थ व्यक्त होता है। यह लज्जाजनक अश्लीलत्व का उदाहरण है। प्रसार इति हे तन्वी तब तुम्हारे विनाश में सम्य वायु धीरे से चली। यहाँ वायु शब्द अपान वायु का सूचक होने से घृणा का और विनाश शब्द मरण का बोधन होने से अमंगल का व्यंजक है। इसमें यथा कर्म युगप सा व्यंजक और अमंगल व्यंजक अश्लीलत्व सूरा इति रण रूप यज्ञ में पशुभूत सूर लोचन अमरत्व को प्राप्त होते हैं। यहाँ सूरों में पशु की समानता बतलाने से उनकी कातरता प्रतीत होती है। यज्ञीय पशु की भांति विवश होकर मरना कायरों का काम है, सूरों का नहीं। अतः यहाँ पशु शब्द में अनुचितार्थत्व दोष है। अपर्युक्त इति व्याकरण दोष कोशादिकों में उस रूप से प्रसिद्ध होने पर भी यदि कवि संप्रदाय में उस शब्द का अनादर हुआ हो तो उसे अपर्युक्त कहते हैं और उस शब्द के प्रयोग करने पर अप्रयुक्तत्व दोष होता है। उदाहरण, भाति इति पद्य शब्द नपुंसक लिंग में ही प्रसिद्ध है पुल्लिंग में नहीं, अतः वाक पुंसी पद्म नलिन्नम इस कोश के होने पर भी यह अप्रयुक्तत्व दोष होता है। वस्तुतः पद्मान्न ही में प्रविशी खंजरीटान इत्यादि स्थलों पर श्रीहर्ष आदि महाकवियों ने पद्म शब्द का पुलिंग में प्रयोग किया है, अतः यहाँ दैवत शब्द का पुलिंग में उदाहरण देना चाहिए। दैवतो अस्य पिशाचो राक्षसोस्थवा यहाँ दैवत चाहिए दैवतम चाहिए। काव्य प्रकाश में इस दोष का यही उदाहरण दिया है। ग्राम्यत्वम इति शब्द तीन प्रकार के होते हैं, नागर उपनागर और ग्राम्य। जो शब्द चतुर पुरुषों में व्यवहित नहीं होते केवल गवारों में ही बोले जाते हैं उन्हें ग्राम्य कहते हैं। कटिर इति यहाँ कटिर शब्द ग्राम्य है। श्रोणी नितंब आदि नागर कहते हैं। अप्रतितत्वम इति जो किसी एक देश में ही अप्रसिद्ध प्रसिद्ध हो उस शब्द को अप्रतीत कहते हैं। योगर इति योग अर्थात समाधि के बल से आशय अर्थात वासना नामक संस्कार को जिसने विनष्ट किया है वह योगी महानिर्वाण पाता है इत्यादि। शुभ अथवा अशुभ कर्मों से उत्पन्न हुए वासना नामक संस्कार को आशय शब्द से योग शास्त्र में ही व्यवहित किया है। आशेरेते फलपाक पर्यन्तम मन्तःकरणे इत्याशया धर्मादयः सुख अथवा दुख रूप फल के देने तक जो अंतःकरण में विद्यमान रहे फलपाक के अनंतर नष्ट हो उन्हें आशय कहते हैं। यह योग का अर्थ समाधि है। यह योग शब्द युज समाधाओं से बना है युजीर योगे से नहीं। अतएव व्यास भाष्य योग दर्शन के आरंभ में लिखा है योगः समाधि समाधि का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को रोकना योगश्चित्त वृत्ति निरोधः समाधि। इस भाष्य पर श्री वाचस्पति मिश्र ने लिखा है युज समाधौ इत्यस्माद् व्युत्पन्न समाध्यर्थो न तु युजिरो योग्य इत्यस्माद् संयोगार्थ इत्यर्थः। श्री तर्क वागीश जी ने युग का अर्थ किया है प्रकृति पुरुष का अभेद चिंतन, यह अर्थ भेद उक्त प्रमाणों से भिन्न विरुद्ध है। प्रकृति और पुरुष का अभेद युग का नहीं वेदांत का सिद्धांत है। युग शास्त्र में प्रकृति भिन्न पदार्थ है, उसका पुरुष के साथ अभेद चिंतन करना मिथ्या ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान मोक्ष का साधक होता है हो सकता। अतएव यह आशय या वासनाओं का विनाश कभी नहीं कर सकता। दूसरे अभेद का अर्थ भेदाभाव, किंतु अभाव के चिंतन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा के चिंतन में ही होती है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से अप्रतीतत्व दोष होता है। आसिर इति यहाँ बंध्या पद संदिग्ध है। बंदी शब्द का सप्तमी में भी यह रूप हो सकता है और बंध्या शब्द का द्वितीय विभक्ति में भी हो सकता है। इस संदेह में के कारण यहाँ संदिग्ध तत्व दोष होता है। श्लेष आदि के बेकार और बकार की अभिन्नता इस संदेह का कारण है। बंध्या शब्द में वकार है और बंदी शब्द में अवर्गीय बकार है। ले अर्थत्वम इति लक्षण के प्रकरण में यह कह चुके हैं कि रूढ़ी या प्रयोजन के कारण लक्षण होती है। यदि इन हेतुओं के बिना कोई लक्षण आदि शब्द का प्रयोग करे तो न्यार्थत्व दोष होता है। कवि की आसक्ति अर्थात व्युत्पत्ति रूप सामर्थ्य के अभाव से लक्ष्य क्रम का प्रकाशन न्यार्थत्व कहता है। उदाहरण लेना लक्ष्य, उदाहरण कमल इति हे सुमुखी तुम्हारे मुख से कमल में लात मारी। अत्र इति यहाँ चारणाघात शब्द से जीत लेना लक्ष्य है। तात्पर्य यह है कि लात मारने के लिए लात का होना आवश्यक है। लात वही मारेगा जिसके लात हो, मुख में लात नहीं होती। अतः मुख अर्थ यहाँ बोधित है। इस कारण लात मारने से जीत लेना लक्षणीय है, परंतु यहाँ इस लक्षण का हेतु न रूढ़ी है न कोई व्यंग प्रयोजन। अतः वह इस लक्षण से कवि की अव्युत्पन्न प्रकट होती है। निहत इति प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध दोनों अर्थों के वाचक शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग करने से निहतार्थत्व दोष होता है। जैसे यमुना इति यद्यपि निरक्षीराम्बू संबरम इत्यादि कोश में संबर शब्द जल के पर्यायों में भी आया है, परंतु काव्यों में इसका प्रयोग संबर नामक असुर के लिए ही होता है। जल के लिए यह शब्द अप्रसिद्ध है। अतः उक्त उदाहरण में यह दोष है, क्योंकि यहाँ जल के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अप्रतियुक्तत्व एकार्थक शब्द में होता है और निहतार्थत्व अनेकार्थक शब्द में। गीतस्व इति यहाँ कान देने के अर्थ में कर्णमादते वाक्य बोला है, किंतु अंग पूर्वक गा धातु का अर्थ लेना है, देना नहीं। अतः आदते पद में अवाचकत्व दोष है, आदते पद देने का वाचक नहीं है। दूसरा उदाहरण दीनम इति अत्र इति यहाँ दिन शब्द प्रकाशमय रूप अर्थ का वाचक है। सूर्यवाचिन्न काल का नाम दिन है। सब प्रकार के प्रकाश से युक्त समय को दिन नहीं कहते। प्रकृत में दिन से प्रकाशयत्व ही विवक्षित है, सूर्यावच्छिन्नत्व नहीं। क्लिष्टम इति अविधेय अर्थ की प्रतीति में व्यवधान का होना क्लिष्ट दोष कहता है। क्षीरोद इति यहाँ क्षीरोद का अर्थ क्षीर सागर, उसकी कन्या लक्ष्मी, उसकी वसती कमल, उसकी जन्मभूमि जल, प्रसन्न हुआ। यहाँ केवल जल की स्वच्छता बतानी है उसके लिए कि इतने शब्द बोलकर क्लिष्टता पैदा कर दी है। भूतये इति भवानी के इस पति कल्याण करें। यहाँ भवनिष्ठ शब्द में पार्वती का दूसरा कोई पति प्रतीत होता है। अतः यहाँ विरुद्ध मति कारिता दोष है, क्योंकि यह पद विरुद्ध मति पैदा करती है। अविष्टम इति जहाँ विधेय अर्थ का विमर्श न हो वहाँ अविमृष्ट विधेयत्व दोष होता है। स्वर्ग इति यहाँ वाक्य में वृथात्व विधेय है, उसे समास में डालकर उपसर्जन कर दिया है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान रहता है, अतः यहाँ वृथात्व अप्रधान हो गया है। प्रत्येक वाक्य में विधेय का प्रधानता के साथ निर्देश होना चाहिए। दूसरा उदाहरण रक्षांस इति, मैं रामानुज हूँ, क्या मेरे सामने राक्षस ठहर सकेंगे। यहाँ वक्ता को राम के संबंध में ही अपने में विशेषता बतानी है, परंतु संबंधवाचक षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया है और राम शब्द को समास में डालकर उसकी प्रधानता दबा दी गई है। अतः उक्त षष्ठी वाक्य में विधेय विमर्श है या अविमृश विधेय सत्व नामक दोष है। यहाँ राम से यह पद पृथक रहना चाहिए और मैं राम का अनुज हूँ ऐसा अर्थ होना चाहिए। यह युद्ध में के समय वीर लक्ष्मण की उक्ति है। अन्य उदाहरण आ समुद्र इति, यहाँ राज्य का समुद्र पर्यंत होना विधेय है, अतः आ समुद्रम पद का समास नहीं करना चाहिए था। और उदाहरण यत्र ते इति, इसमें इस वाक्य में षष्ठत्व उत्प्रेक्ष है, वही विधेय है, अतः षष्ठ इव इस असमस्त बोलना चाहिए। बाण के साथ षष्ठ को समास कर देना देने से उसकी प्रधानता जाती रही। अमुक्त इति, यहाँ नए प्रसज्य प्रतिषेधक है, अतः उसे विधेय ही रखना चाहिए और उसके साथ समास न करके नमुक्ता ऐसा पृथक पद रखना चाहिए। नए दो प्रकार के होते हैं, एक प्रयोदास दूसरा प्रसज्य। प्रयोदास में तद्भिन्न तत्सदृश पदार्थ का बोध होता है, यहाँ नए उत्तर पद के साथ संबंध रहता है, अतएव इसके साथ समास होता है। जैसे अब्राह्मण शब्द, इस शब्द से ब्राह्मण जाति से भिन्न किंतु उसके सदृश हाथ पैर वाला क्षत्रिय आदि प्रतीत होता है। अब्राह्मण को लाओ ऐसा कहने से मिट्टी का ढेला कोई नहीं लाता, क्योंकि ब्राह्मण से भिन्न होने पर भी वह ब्राह्मण के सदृश नहीं है। यही निम्न कारिका से कहा है, दौ नयो समाख्यात पर्योदास प्रसंजक परिउदास सदृश ग्राही प्रसज्यस्तु निषेध कृतः। प्रसज्य प्रतिषेध उसे कहते हैं जो सीधा निषेध करे, जैसे न गच्छेत, यहाँ नय किया क्रिया के साथ संबंध रहता है, अतः दूसरे पदों के साथ उसका समास नहीं हुआ करता। इसमें प्रधानतया निषेध ही विधीयमान रहता है। अमुक्ता इत्यादि पद में निषेध की ही विधेय है, अतः यहाँ भी न के साथ समास नहीं होना चाहिए था। समास करने से निषेध ही की प्रधानतया प्रतीति नहीं होती, अतः यहाँ विषेध विधेय विमर्श दोष है। अप्रधान्यम इति, जहाँ विध्वंस में अप्रधानता हो और प्रतिषेधांश में प्रधानता हो वह प्रसज्य प्रतिषेध होता है। ऐसे स्थल में नय का संबंध क्रिया के साथ रहता है, जैसे नव जलधर इति, यहाँ प्रसज्य प्रतिषेध है, अतएव न दुप्त निशाचर में समास नहीं किया है, किन्तु उक्त उदाहरण में तत्पुरुष समास करके नय को उपसर्जन बना दिया, अतः यह प्रयोदासत्व की प्रतीति होती है। निषेध का प्रधान रूप से भान नहीं होता। प्रधानत्वम इति, यहाँ विध्वंस में प्रधानता हो और प्रतिषेधांश में अप्रधानता हो उस नय को प्रयोदास समझना चाहिए। इसका संबंध उत्तर पद के साथ होता है, जैसे युगपद इति, यह राजा दिलीप का वर्णन है, गृहणु लोभी को कहते हैं। अत्र इति, यह अत्रस्तत्व अनातुरत्व अग्रधनुत्व और असक्तत्व का अनुवाद करके आत्मगोपन धर्म सेवन अर्थादान और मुखानुभाव विधेय है, अतः न प्रयुदास है, प्रसज्य नहीं। इस कारण समास में उसका उपसर्जन करना उचित ही हुआ है। नंदिति प्रश्न, जैसे अस्ताद भोजी ब्राह्मण और सूर्य संपस्या राजदरा इत्यादि को में प्रतिषेधार्थक नय के साथ समास होता है, उसी प्रकार अमुक्ता इस पद में भी प्रसज्य प्रतिषेधार्थक नय के साथ समास मान ले तो क्या हो हानि है। उत्तर, उक्त दृष्टांतों में प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है। यदि भोजन दर्शन आदि क्रियाओं के साथ नय का संबंध होता हो तो इसमें प्रसज्य प्रतिषेध कहा जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। प्रधानेन ही संबंधा गुणानाश्च परार्थस्याद संबंधः इत्यादि न्याय के अनुसार यह कर्ता के साथ नय का संबंध होता है, क्योंकि यहाँ वही प्रधान है। प्रकृति प्रत्यय सहार्थ वृत्तस्तयो प्रत्यास अर्थः प्रधानम्, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय मिलकर अर्थ देते हैं, किंतु उनमें प्रत्यय का अर्थ प्रधान रहता है। अश्राद्ध भोजी और असूर्य तपस्या में प्रत्यार्थ होने के कारण कर्ता प्रधान है, इसमें प्रमाण देते हैं श्राद्ध इति। अश्राद्ध भोजी इस पद में श्राद्ध भोजनशील कर्ता की प्रतीति होती है, केवल भोजन की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि यह इनी सूत्र जाता इस सूत्र से ताचिल्य अर्थक ऋणी प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। अमुक्त इति अमुक्त आदि पूर्वोक्त उदाहरण में तो क्रिया के ही साथ लय का संबंध है, अतः यह वह दोष है।
क्लिष्टत्व विरुद्धमतिकारित्व और विधेय विमर्श पद दोष समास में ही होते हैं। वाक्य इति वाक्यगत दूसरत्व का उदाहरण। स्मर इति तुम्हारे विरह में स्मराते मनमथ वेदना से अंधा हुआ मैं कब कर्तार्थ कृतार्थता को प्राप्त करूंगा। यहाँ स्मरार्थी कर्तार्थ और लक्ष्य इन अनेक पदों में रेफ और महाप्राण वर्णों को का संयोग होने से वाक्यगत सुश्रुत दोष होता है। कृत इति अन्य के अर्थ में जिसने प्रवृत्ति की है, अर्थात जो कवि अन्य कवियों के कहे हुए अर्थ को चुराता है वह बांत खाता है। अत्र इति यहाँ घृणा व्यंजक अश्लील है। प्रवृत्ति शब्द पुरुषोत्सव का व्यंजक है और वांत का आसन अत्यंत घृणा व्यंजक है, अतः यह वाक्यगत दोष है। उद्यतिति वक्रा वामा अर्थात सुंदरियों से उद्धत प्रकाशमान कमल पद्म लौहित्य राग से अपने शरीर को भूषित किया। यहाँ पदम शब्द में कमल लक्ष्य है और लौहित्य शब्द से राग लक्ष्य है एवं वक्रा शब्द से वामा लक्षण्य है, किंतु इन लक्षणों का कारण न रूढ़ी है न प्रयोजन होता है, अतः यह पूर्ववत न्यार्थता दोष है। अनेक पदों में होने के कारण यह वाक्यगत है। वाक्यगत क्लिष्ट का उदाहरण धम्मिलस्य इति जिसकी बंध्युत्पत्ति अर्थात रचना चातुरी या गूथने की कला अद्भुत है, उस धम्मिल की शोभा का देखकर इसका मन अनुरक्त होता है। यहाँ कई पदों का जो दूर दूर है संबंध क्लेश से करना पड़ता है। धम्मिलस्य सबसे पहले है परंतु उसका संबंध सबसे पीछे पढ़े हुए शोभाम पद के साथ है एवं इस शोभाम का प्रेक्ष के साथ मानसम का न के और न का रज्जति के साथ दुरान्वय है। न्यकार इति इस पद में न्यकारस्य वाक्य विधेय है और अयमेव उद्देश्य है। अनुवाद्यम अनुरक्तैव न विधेयम उदीरयते नद्मलाब्धम मसस्पदम किंचित कुत्रचित इता तिष्ठति। उद्देश्य को बिना कहे विधेय न बोले, बिना आश्रय के कोई वस्तु न कहीं नहीं ठहरते। इस न्याय के अनुसार पहले उद्देश्य और पीछे विधेय बोलना चाहिए। तच्च इति वह उद्देश्य विधेयमान उक्त पद में उक्त शब्दों की रचना के वैपरीत्य अर्थात पहले विधेय और पिछले उद्देश्य के पढ़ने से विधेय की प्रधानता प्रतीत नहीं होती। यहाँ रचना दो प्रकार की बिगड़ी है, अतः यह वाक्य दोष है। दूसरा उदाहरण आनंदयती यत तदोर इति यत और तत् शब्द का नित्य संबंध होता है, एक के बिना दूसरा साकांक्ष रहता है। इस न्याय के अनुसार उक्त पद्य में प्रकृत तत् शब्द की आकांक्षा पूरी करने के लिए तत् शब्द के समानार्थक इदम एतत् या अदस शब्द विधेय ही होने चाहिए, किंतु प्रकृत पद्य में यत शब्द के समीप में स्थित होने के कारण अदस शब्द से विधेयता का भान नहीं होता, अनुवाद्यत्व की प्रतीति होती है। इसी प्रकार तत् शब्द भी यदि यत शब्द के समीप में ही स्थित हो तो केवल प्रसिद्धि का बोधक है होता है, विधेयक का विधेयक नहीं होता है। जैसे यह स इत्यादि। इस उदाहरण में पहला तत् शब्द का केवल प्रसिद्ध का परामर्श करता है, यत शब्द इति। यत शब्द से यदि कुछ व्यवधान देकर तद आदिक शब्द स्थित हो तो निराकांक्षता का बोधन करते हैं, जैसे आनंद यति। इस वाक्य में अधुना पद से व्यवहित होने के कारण अदस शब्द से आकांक्षा शांत हो जाती है। इसी प्रकार इदम आदि शब्द से में भी जानना, यत्र च इति, यहाँ और जहाँ, यत तत् शब्दों में से किसी एक का अर्थत्व अर्थ के बल से आक्षेप हो सकता है, वहाँ केवल एक का ग्रहण करने पर भी आकांक्षता शांत हो जाती है, अतः वहाँ कोई क्षति नहीं होती। जहाँ उत्तर वाक्य में यत का ग्रहण होता है वहाँ पूर्व वाक्य में तत् शब्द का अर्थ के बल से लब्ध हो सकता है, जैसे आत्म इति। हृदय ही जानना है, हृदय ही जानता है जो पाप है, वहाँ अगले वाक्य में यत शब्द है किंतु पूर्व में तत् शब्द कहा नहीं, वह अर्थ है। अतः यह अर्थ होना चाहिए कि जो पाप है उसे आत्मा जानता है, एवं इति। इसी प्रकार यम सर्व शैला इत्यादि उत्तर वाक्यों में यत शब्द होने के कारण पूर्व वाक्य इत्यादि में तत् शब्द होने पर भी अर्थ है। प्रकारांत सिद्ध और पूर्वानुभूत वस्तु के लिए जहाँ तत् शब्द आता है यहाँ वहाँ तत् अर्थ होता है। क्रम से उदाहरण देते हैं। उस वीर ने बाली को मारकर बहुत दिन से अभिलाषित उसके राज्य में सुग्रीव को घात के स्थान में आदेश की प्रति तरह प्रतिष्ठित किया। यहाँ श्री रामचंद्र जी की प्रकरण चल रहा है। तत् शब्द प्रकरांतवाचक है, अतः तत् यत शब्द अर्थ है, एवं स एव इति, स व इति इत्यादि तत् शब्द से लोक प्रसिद्ध शशि कला मौली का अभिधान होने के कारण यत शब्द अर्थ है। तमी इति, इसमें पूर्वानुमान कामिनी का तत् शब्द से परामर्श किया गया है। यत्र च इति, यहाँ यत शब्द से के समीपस्थ होने पर भी इस इदमादि शब्द के लिंग और विभक्तियाँ भिन्न होती है, वहाँ निराकांक्षता ही होती है। जैसे विमात इति, यहाँ या के साथ ही विधेय यम पढ़ा है किंतु उसका लिंग भिन्न है, अतः उसमें उद्देश्यता की प्रतीति नहीं होती है। एवं उत्तरार्ध में यह के साथ ही भिन्न विभक्ति वाला तीन पद है, यहाँ कोई दोष नहीं है। क्वाच इति, यही कहीं यत और तत् दोनों का अर्थ के सामर्थ्य से अवगम होता है। न में इति, मेरे दुख भार को दूर करने वाले कोई नहीं, यह समझकर हे पृथ्वी तू शोक मत कर, नंद के घर में कोई अद्भुत पुरुषार्थ रखने वाला बालक है। अत्र इति, नंद के घर में जो बालक है वह तेरे मार का भार का समन करेगा, वह यह बात प्रतीत होता है। ग्रहण न होने पर भी यत और तत् दोनों अर्थ के सामर्थ्य से अवगत होता है। प्रश्न इद्यति इति, मुझे जो जो विरह का दुख है उसे कौन दूर करेगा। इस वाक्य में उद्देश्य में यह उत शब्द यत शब्द दो बार आया है किंतु आगे सब तत् शब्द एक ही है, अतः यह एक शब्द साकांक्ष है, उसके लिए एक और तत् शब्द चाहिए। उत्तर इति न वाच्यम, ऐसा न कहो, क्योंकि यहाँ पूर्व वाक्य में यत यत शब्दों से विपसा के द्वारा संपूर्ण दुखों की विवक्षा है। उसी स्वरूप के उत्तर वाक्य के तत् शब्द ने उनका परामर्श किया है, अतः कोई साकांक्ष नहीं है। इसी प्रकार अन्य दोषों का भी वाक्य में उदाहरण जानना। पदांश में श्रुति कटुत्व का उदाहरण तत् गच्छ इति। यहाँ सिद्धय पद का एक अंश द्वैह श्रुति कटु है, धातु मताम अत्रैति। मता शब्द प्रमत स्त्री के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ उसका तद्धता रूप अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग है, अतः निहर्थार्थता दोष है। धातु मता पद के एक अंश मता में दूषित होने से यह पदांश दोष है। छिभार्थे प्रसिद्ध इहतु तद्धतार्थे निहत। इस प्रकार इस पंक्ति की योजना करनी चाहिए। छिव अर्थ प्रसिद्ध है, अतः उसमें निहितार्थ नहीं हो सकती, इसलिए यथाश्रुत योजना ठीक नहीं है। वर्णयते यहाँ विजय पद में कत प्रत्यय के अर्थ में यत अचोयत प्रत्यय का प्रयोग किया है, अतः पदांशगत अवाचकत्व है। पाणिर इति पेलव शब्द के पहले दो अक्षरों के लज्जा व्यंजक अश्लीलता प्रकट होती है। संग्राम में वचो बाण शब्द में वचस शब्द का गिर शब्द के लिए लक्षणा के से प्रयोग किया गया है। गिरवाण के बोधन में तात्पर्य है, परंतु रूढ़ी अथवा प्रयोजन के न होने से लक्षणा यहाँ नहीं हो सकती, अतः पदांशगत न्यार्थता दोष है। तथा इति इसी प्रकार यदि उक्त शब्द में बाण के स्थान में सर पढ़ दे तो भी यह दोष होगा। अत्र पदद्वयम् इस ग्रीवाण शब्द में दोनों पद परिवर्तन नहीं सह सकते, इनमें से कोई भी बदला नहीं जा सकता। जलधि आदि शब्दों में उत्तर पद में परिवर्तन नहीं हो सकता, पूर्व पद जल के स्थान में चाहे जो कुछ पर्याय रख सकते हैं, जलधि वारिधि पयोधि आदि बना सकते हैं, किंतु उत्तर पद को बदलकर यदि जलधाने आदि बना दे तो समुद्र का वाचक न रहेगा। वड इति वडनवाल वाडवानल आदि पदों में पूर्व नहीं बदला जा सकता। एवं इसी प्रकार अन्य पदांश दोष जानना निरर्थकत्वाद इति निरर्थकत्व असमर्थत्व और च्युत संस्कारता इन तीन दोषों का उदाहरण पद में ही संभव है, पदांश या वाक्य में इनका उदाहरण नहीं मिल सकता। क्रमेण इति निरर्थकत्वादिकों का क्रम से उदाहरण मुंच इति यहाँ ही पद निरर्थक है, केवल छंद के अक्षर पूरे करने के लिए उसे रख दिया। कुंजम इति यहाँ गमन रूप अर्थ में हन धातु का प्रयोग किया गया है, परंतु इस अर्थ में यह असमर्थ है। यद्यपि व्याकरण में हन हिसांगत्यो लिखा है, हिंसा और गति दोनों हन के अर्थ बताए हैं, परंतु पद्धति आदि कुछ प्रयोगों के अतिरिक्त इस अर्थ में उक्त धातु का प्रयोग नहीं होता। हन्ति रूप गच्छति में के प्रयोग में सर्वथा अप्रयुक्त है, अतः यहाँ असमर्थत्व दोष है। गांडीव इति अर्जुन ने किरात वेशधारी शंकर के स्वर्ण शिला सदृश वक्षस्थल को दोनों हाथों से आहत किया। आंग इति आत्मने पद का विधान करने वाले आंगो यमहन इस सूत्र में स्वांग कर्म का कर्मक वाच्य इस सूत्र का संबंध है, अतः आंग पूर्वक हन धातु से आत्मने पद तभी होता है जब उसका कर्म स्वांग ब्रैकेट मारने वाले का अपना अंग ब्रैकेट बंद हो, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। इन धातु के रूप आज्ञने का कर्म शंकर वक्षस्थल है और मारने वाले अर्जुन है, अतः व्याकरण के नियम से विरुद्ध होने के कारण यहाँ चित्त संस्कारता दोष है। व्याकरणानुसार यहाँ आज घान होना चाहिए। नन्वईति प्रश्न आजघ्ने यह पद स्वयं तो दुष्ट नहीं है, व्याकरण के अनुसार इसकी सिद्धि होती ही है, इसके साथ दूसरे पद विषम विलोचनस्य वक्षः के होने से यह दूषित हो गया है, अतः दो पदों का दोष होने के कारण इसे वाक्य दोष क्यों न माना जाए। उत्तर मैवम इति ऐसा मत कहो, शब्द अथवा अर्थ में गुण दोष और अलंकारों की स्थिति का निर्णय पूर्वोक्त अन्वय व्यतिरेक के द्वारा होता है। जो दोष जिस शब्द के रखने पर बना रहे और उसके हटा देने से हट जाए वह उसी शब्द का दोष माना जाता है, एवं जिस अर्थ का सत्ता में से जो दोष बना रहे वह उस अर्थ के अभाव में निवृत्त हो जाए वह उस अर्थ का दोष माना जाता है। प्रकृति में यह दोष आजघन्य इस पद से ही संबद्ध है, क्योंकि यहाँ यदि और पदों को बदलकर उनके पर्यावाचक रख दिए जाएं तो वह दोष बना ही रहेगा, किंतु यदि आजघन्य को हटाकर इसका पर्याय रख दें तो उक्त दोष नहीं रहता। अतः इसी पद के साथ संबंध रखने के कारण यह पद दोष है। तथा इति जैसे यहाँ आत्मने पद को बदल देने से दोष नहीं रहता, इसी प्रकार हन धातु के बदलने पर भी नहीं रहता, अतएव इसे पदांश दोष भी नहीं कह सकते। एवं पद्म इसी प्रकार पद्म इत्यादि में पूर्वोक्त अप्रयुक्त तत्व दोष को पद दोष जानना, प्रकृत आदि के शब्दों में भी उनके व्याकरणों का विरोध होने पर भी इसी प्रकार चित्त संस्कारता दोष जानना चाहिए। कई दोषों के परस्पर भेद को स्पष्ट करते हुए इहतु जिस शब्द का जिस अर्थ के साथ सर्वथा प्रयोगाभाव है, अर्थात जो शब्द जिस अर्थ में कभी प्रयुक्त नहीं होता उसका उस अर्थ में प्रयोग करने से असमर्थत्व दोष होता है। जैसे गच्छति के अर्थ में हंति का प्रयोग दिखाया, बिरल इति जिस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग बिरल होता है उसका उसी अर्थ में प्रयोग करने से निहितार्थत्व दोष होता है। निहितार्थत्व अनेकार्थत्व शब्दों में ही हो सकता है, किंतु अप्रतितत्व दोष वहाँ होता है जहाँ शब्द चाहे एकार्थक हो चाहे अनेकार्थक हो किंतु उसका उस अर्थ के प्रयोग में सर्वथा न होता हो। जैसे आशय शब्द वासना के लिए योग शास्त्र में ही आता है, अप्रयुक्तत्वम इति अप्रयुक्तत्व एकार्थक शब्दों में होता है, असमर्थत्वम इति असमर्थत्व दोष अनेकार्थ शब्दों में होता है। इसके उदाहरण हन धातु आदि है जो व्याकरण में गमन आदि अर्थों में पढ़ी है, परंतु पद्धति आदि कुछ शब्दों के अतिरिक्त गमन अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता। गच्छति का अर्थ है हंति का प्रयोग कहीं नहीं होता, किंतु अवाचकत्व के उदाहरण दिन आदि शब्द है जो प्रकाशमय आदि अर्थों के लिए कहीं नहीं पढ़े गए हैं। यही इन दोषों का परस्पर भेद है। संस्कृत वर्णानाम प्रतिकूलत्वम लुप्ताहत विसर्गते अधिक न्यून कथितम पदताहत वृतताह पतत प्रकर्षताह संधौ विश्लेषाः अशलील कष्टताः अर्घांत अर्धांतर कायिक पादताः समाप्त पुनराततः अभवन मत संबंधा अक्रमा मत परार्थताः वाचस्याभिधानम् न भग्न प्रकर्मता तथा त्यागः प्रसीधे प्रसिद्धेरस्थाने न्यासः पदसमासयोः संकीर्णता गर्भितता दोषाः स्वायो वाक्यमात्रगाः वर्णानामरसानुगुणीय विपरीतत्वं प्रतिकूलत्वं यथा मम वट्ठैउलट्ठै षण्डो इहपीमोटायैणो परिहै ययै पिच्छै लजायै गुट्ठै दिह्येषा अत्र टकाराः श्रृंगार रसपरी पंथिनः केवलं शक्ति प्रदर्शनाय निबद्धाः एषाम चैकद्वित्रिश्चतु प्रयोगेन तादृशं वक्षंभंग इति न दोषः गतानीसा इमावाले अत्र लुप्ता विसर्गः आहतावत्त्वं प्राप्ता विसर्ग यत्र यथा धीरो वरो नरो यति मिति पल्लवाकृते अक्तोष्ठी अत्राकृतिमधिकमम् एवं सदाशिवम् नौमि पीनाकपाणिम् इति विशेषमधिकरणम् कुर्या हरस्यापि
पिनाकपाणे इति अत्र तु पिनाकपाणि पदं विशेष प्रतिपत्यर्थ उपातम् इति युक्तम् एव कुर्यात्। यथा वा वाचम् उवाच कौत्सः, अत्र वाचम् अधिकम् उवाच चेत्यन्ये नैव गतार्थत्वात् केचितु विशेषणादानार्थ तत्प्रयोगो युज्यते। यथा उवाच मधुराम् वाचम् इति केचित्त्वाहु यत्र विशेषणस्यापि क्रियाविशेषणत्वम् सम्भवति तत्रापि तत्प्रयोगे न घटते। यथा उवाच मधुरम् धिम्मान इति यदि मर्ह्य अर्पिता दृष्टिः किम् ममेन्द्रतया तदा, अत्र प्रथमे त्वयेति पदम् न्यूनम् रतिलीला सम्भिन्ते सलीलम् नीलो वहन लीलाशब्दः पुनरुक्तः एवम् चक्षुर्विषम् धृतविकास इविष प्रसूनाः। अत्र विशदशब्दस्य धृतपरिस्फुट तत्प्रसूना इति सर्वनाम्नैव परामर्शो युक्तः। हत्तवृतम् लक्षणानुसरणे अशरब्ण्यः रसानुगुण सम्प्राप्तम् गुरुर्भावान्तलघु च कर्मेण यथा हन्तः सततमेतस्तया हृदयम् भिन्ते मनोभवम् कुपितः। अयि मयि मनानि मानिनि मा कुर्मानम् इदम् वृतम् हास्य रसस्यैव अनुकूलम् विकसित सहकारभारहासि हारपरिमल एष समागतो वसन्तः। यत्पदान्ते लघोरपि गुरुभावः उक्तस्तः सर्वत्र द्वितीयचतुर्थपादविषयम् प्रथमतृतीये पादविषयम् तु वसन्ततिलक यदूरेव यत्र अत्र प्रमोदित सौरभ आगतो वसन्तः इति पाठो युक्तः। यथा वा अन्यास्ता गुणरत्नो रोहणगुर्भुवो धन्याः मृदन्यैव सा संभारा खलुत्यन्य एव विधिना यैरेष सृष्टो युवा श्रीमत्कान्तियुषाम् द्वित्साम् करतलास्त्रीणाम् नितम्बस्थलाद दृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसाम् स्त्राणिः वस्त्राणि च अत्र वस्त्राणि चैति बन्धस्य श्लत्थत्वश्रुतिः। वस्त्राणि अपीति पाठे तु दाण्ढ्यम् इति न दोषः। इदम् प्राप्त गुरुर्भावान्तलघु इति काव्यप्रकाशकारकः वस्तुतस्तु लक्षणानुसरणे अप्यम् श्रव्यम् इत्यन्ते प्रज्वल ज्वलन बालाबिकटोरु षटाक्षतः श्वासक्षिप्तकुलमाक्ष भृतापातु वो नरकेसरी। अत्र क्रमेणानुप्राश प्रकर्षः प्रपतीतः दलिते उत्पले एते अक्षिणी अमलाङ्गिते एवंविध सन्धे विश्लेषस्याः संकृत्य प्रयोगे एवं दोषः। अनुशासनम् उल्लङ्घ्य वृतभङ्गमात्रेण सन्धिविश्लेषस्य तु सक्रेदपि यथा वासवासामुखे भातीन्दु चन्दनबिन्दुवत चलण्डाम अरश्चेष्टि इति। अत्र सन्धौ जुगुप्साव्यञ्जकसलिलत्वम् ऊर्ध्वसावत्र सर्वालिमर्चन्ते चारवस्थितिः। यत्र सन्धौ कष्टत्वम् इन्दुर्विभातिः कर्पूरगौर्यै वलयलङ्करहि जगन्मा कुरु तवङ्गिः मानम् पादानत्ते प्रिये। अत्र जगद इति प्रथमार्धे पठितुम् मोचितम् नाशयन्तो धनवान्तम् तापयन्तो विनोयोगिनः पतन्ति शशिनः पादाभाषयन्तः क्षमातलम्। अत्र चतुर्थपादो वाक्यसमावपि पुनरात्तः अभवन्मतसम्बन्धो यथा या जयश्रीर्मनुजस्य यया जगदल् अलङ्कृतम् याम्यक्त
प्राक्षी बिना प्राण विफला मे कृतो अवसा। अत्र यक्ष शब्द निर्दृष्टानां वाक्यानां परस्पर निरपेक्षत्वात् एकान्तपाती नैह क्षी शब्देन एषां संबंधः कवेरभीमतु नोपपद्यते एव यां विनामि यथा वृथा प्राणः एणाक्षीषा कृतोद्यमे इति तच्छ शब्दस्य निर्दिष्टवाक्यान्तः पतित्वे तु सर्वैरपि यक्ष शब्द निर्दिष्टवाक्यै सम्बन्धो घटते यथा वा इच्छसि यत्कटाक्षेण तदा घन्वी मनोभवः। अत्र यदिष्टस्य तदे अन्येन सम्बन्धो न घटते इच्छसि चेत इति तु पाठः युक्तः यथा वा ज्योत्सरणाचयः पयपुरस्तारका कैरवाणी च राजति व्योमकाशारहन्दाजहंसः सुधाकरः। अत्र व्योमकाशारशब्दस्य समासे गुणिभावतार्थ तदर्थस्य न सर्वैः संयोगः विधेया विमर्शे यदेवा विमर्शिष्टम् तदेव दुष्टम् इह तु प्रधानस्य कसारपदार्थस्य प्रधान्येन प्रतीते सर्वोऽपि पयः पुरादिपदार्थस्य दङ्गतया न प्रतीयते इति सर्ववाक्यार्थविरोधाभासः। इत्योभयो भेद अनेन छिद्यन्ताः मातुः कण्ठपरशुन तव बद्धस्पर्धः कृपाणो वयम् लयते मम भार्गव। अत्र भगवान् निन्दायाम् प्रयुक्तस्य मातृकण्ठच्छेदनस्य परशुन सह सम्बन्धो न युक्तः इति प्राच्याः परशुरानिन्दासु मुखेन भार्गवन्निन्दा अधिक्यमेव वैदग्ध्यम् द्योतयतीत्याधुनिकाक्रमतायतः समय एव करोति बलाबलम् प्राणिदत्तम् इतीव शारिणीम् सरदिम् हंसरवाह पुरुष्कृतस्वरमयूरमयु रमणीयताम्। अत्र परामृश्यम् मानवाक्यमनन्तरम् एव अति शब्दोपयोगो युच्यते न तु प्राणिदत्तः इत्यन्तरम् एव द्वयम् गतम् सम्प्रति शोचनीयताम् समागतप्रार्थनया कपालिनः कला च सा कान्तिमती कलावस्तस्य मन्यस्य लोकस्य न चैत्रकौमुदिः। अत्र त्वम् इत्यन्तरमेव चकारोः युक्तः अमतपरार्थत यथा राममन्मथ सरेण तण्डिता इत्यादि। अत्र शृङ्गाररसस्य व्यञ्जको द्वितीयोऽर्थः तकर्तरस विरोधित्वादनिष्ठः वाच्यस्यानभिधानम् यथा व्यक्ति क्रमलवम् कम् मे वृक्षः वामाक्षी कुप्यसि। अत्र व्यतिक्रमम् पित्यपीरवश्यम् वक्तव्यो नोक्तः न्यूनपदत्वे वाचक पदस्यैव न्यूनता विवक्षिता अपेक्षतु अपेस्यतु अपेस्तु न तथा त्वम् इत्यनयोरभेदः एवमन्यत्रापि यथा वा चरणन्नता कान्तायस्वन्तन्वी कोपस्तथापि हि ते। अत्र चरणान् कान्तासि ते वाच्यम् मनप्रकरमता यथा एवमुक्तो मन्त्री मुखैः रावणः प्रत्यभासत। अत्र वचधातु न प्रकरन्त प्रतिवचनात्मपि तेनैव वक्तुम् उचितम् तेन रावणः प्रत्यवोचवत् इति पाठः युक्तः। एवम् च सती न कथितपदत्वदोषः तस्योदेशः प्रतिनिर्देशेभ्यः प्रतिरितिक्त विषयकत्वात् इह हि वचनप्रतिवचनयोर उदेश्य प्रतिनिर्देशत्वम् यथा उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च इत्यत्र हि यदि पदान्तेण स एवार्थः प्रतिपद्यते तदन्योऽर्थ इव प्रतिभासमान इत्प्रतीतिः स्थगयति यथा वा ते हिमालयमाम् मन्यत्र पुनः पप्रेक्ष सशूलीनम् सिद्धम् चास्मै निवेदार्थ तद्वि सृष्टा खमोद्ययुः। अत्र अस्मैः इतिदमा प्रकरान्तस्य तेनैव तस्माद्नाभ्यः
भेतद शब्दाभ्याम वा परस्मार्शो युक्तः नो तच्छब्देन यथा वा उदन्वच्छिन्ना भूः सच पतिरपां योजनशतम् अत्र मीता भूः प्रत्यापां सच पतिरपां इति युक्तः पाठः एवम् यशो अधिगन्तु सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्याम् अतिवर्तितुं वा निरुत्सुक नाम अभियोग भासाम भाज्याम समुत्सुके वांकम उपायति सिद्धिः अत्र सुखमीह हेतुम इत्यम उचितम अत्राद्यौ प्रकृत विषय परक्रम भेद तृतीय पर्याय विशेषः चतुर्थे प्रत्यय विशेष विषयः एवमन्यत्रापि प्रसिद्धत्यागो यथा घोरो वारिमुच्यम रवः अत्र मेघानाम गर्जितम् एव प्रसिद्धम् यदाहु मञ्जिरादिषु रणितप्रायः पक्षिषु तु कुजितप्रभृतिः इत मणितादिसुरते मेघादिषु गर्जित प्रमुखम् इत्यादि अस्थानस्था पदता यथा तीर्थे तदीय गजते सेतुबन्ध आप्रतिपगाम उरतयो तस्य गङ्गाम अयन् बालव्यञ्जनि बभूवः बुहसा नभो नलङ्घन लोलपक्षाः अत्र तदीयपदात् पूर्वम् गङ्गाम इत्यस्य पाठो युक्तः एवम् हितानयः शृणुते स किम् प्रभु अत्र शृणुत इत्यतः पूर्वम् नय स्थिर तिरुचिता अत्र च पदमामात्रस्थाने निवेश अपि सर्वमेव वाक्यम् विवक्षितार्थ प्रत्यायने मन्थरम् इति वाक्यदोषता एवमन्यत्रापि इह क्यप्याहु पदसम्बदि शब्देन वाचकमेव प्रायो निगद्यते न च नयो वाचकता निर्विदवात् तन्त्रेयाणर्थबोधन व्यहात इति यथा द्वयम् गतम् इत्यादौ त्वम् इत्यन्तरम् चकार अनुपादान क्रमतात्तथात्रापिति अस्थानस्थान समाक्षता यथा अद्यापि स्थितनशैलदुर्गविषमे सीमन्ति निनाम् हृदय स्थातुम् वांक्ष इति मान एषः धिगति क्रोधादि वालोहितः क्रोध दूरतर प्रसारित करः कर्षत्यसौ तक्षण फूलकैर कोशनिश लिक्ष्रेणि कृपाणम् शशिः अत्र कोपिनः उक्तौ समासो न कृतः कवेरुक्तौ कृतः वाक्यार्थ वाक्यान्तरपदानाम् वाक्यान्तरे अनुप्रवेशः सङ्कीर्णयत्वम् यथा चन्द्रम् मुञ्च कुरङ्गाङ्क्षी पयमानम् नभोवङ्गने अत्र नभोवङ्गने चन्द्रम् पश्यमानम् मुञ्च इति युक्तम् क्लिष्टत्वम् एकवाक्यम् विषयम् इत्यस्माद्भिन्नम् वाक्यान्तरे वाक्यान्तरानुप्रवेशो गर्भित्मता यथा रमणे चरणप्रान्ते प्राण अति प्रवेशे अधुना वदामि सखीते तत्त्वम् कदाचिन्नो चिन्ताः क्रोधः वर्थपद्दोषानुह हिंदी। इस प्रकार पद दोष में सजातीय वाक्य दोष दिखाने के अनंतर अब उनके विजातीय वाक्य दोष दिखाते हैं। वर्ण नाम इति प्रतिकूल वर्णत्वम् लुप्त विसर्गत्वम् आहता विसर्गत्वम् अधिक पदत्वम् न्यून पदत्वम् कथित पदत्वम् हतवृतत्वम् पदत्कर्षत्व संधि विश्लेष संधि सलिलत्व संधि कष्टत्व अर्धांतरैक पदत्व समाप्त पुनरातत्व अभवन्मत संबधत्व संबंधत्व अक्रमत्व अमत परार्थत्व वाच्यन विधानम् भग्न प्रक्रमत्व प्रसिद्धित्याग अस्थान पदत्व अस्थान स्थास मासत्व संकीर्णत्व और गर्भितत्व ये दोष केवल वाक्यों में होते हैं। पदादिको में नहीं होते। प्रत्येक दोष का लक्षण और उदाहरण दिखाते हैं। वर्णानाम इति रस दो प्रकार के होते हैं, कोमल और प्रदीप्त। इनमें यथा योग्य कोमल और कठोर वर्णों की रचना होनी चाहिए। यदि वर्णों की रचना रस के विपरीत हो, अर्थात कोमल रस में कठोर और प्रदीप्त रस में कोमल वर्णों की रचना करने से प्रतिकूल वर्णत्व नामक दोष होता है। उदाहरण अववर्तयति उल्लयोत्थति शयने कर्महपि मोट्यति नो परिघटते हृदयेन स्फुटयति लज्जया घटयति धृतेसा। यह नायक के प्रति दूती की उक्ति है। तुम्हारे वियोग में यह करवटें बदल रही है, पलंग पर कभी हाथ पैर पटकती है, मोटायती करती है, किसी कार्य में परिघटित नहीं होती, उसका जी टूट जाता है, वह लज्जा के कारण धैर्य में च्यूत हो रही है। अत्र इति यहाँ कोमल रस में उसके विरोध भी कठोर वर्ण हमने केवल अपनी कविता शक्ति के दिखाने के लिए जानबूझकर रख दिए हैं। गुण संग्रह के समान उत्कृष्ट दोषों को इकट्ठा करना भी कवित्व शक्ति का परिचायक है। ज्ञान प्रतिकूल वर्णों का दो एक बार यदि कहीं प्रयोग हो जाए तो उतना रसभंग नहीं होता, अतः यहाँ दोष भी नहीं होता। अनेक बार और दो दो संयुक्त चकार उक्त पद में अत्यंत दोषाघायक है। उक्त पद्य में विप्रलम्ब श्रृंगार अत्यंत कोमल रस है, उसमें इन कठोर वर्णों की रचना के प्रतिकूल वर्णत्व दोष हुआ है। गताय इति इस वाक्य में सर्वत्र विसर्गों का लोप हो जाने से लुप्त विसर्गत्व होता है। आहता इति यहाँ आहत शब्द का अर्थ है ओंकार के रूप में परिणत होना। जहाँ अनेक विसर्ग ओकार के रूप में परिणत होते हैं वहाँ आहत विसर्गत्व दोष होता है। जैसे धीरो पल्लव इति यहाँ आकृति पद अधिक है, पल्लव वर्ग तोष्ठ ही कहना चाहिए। सदाशिवम यहाँ पिनाक पाणी यह विशेषण अधिक है। नमस्कार के प्रकरण में पिनाक का नहीं अपितु भक्तवत्सला आदि का वर्णन होना चाहिए। कुर्याम इति इस पद्य में कामदेव ने अपनी वीरता सूचित करने के लिए कुरियो हरस्यापि पिनाक पाणे धैर्य च्युति के मम धन विनय धन विनोन्य पिनाक पाणी विशेषण दिया है। इस यह ठीक है। अधिक पदत्व का दूसरा उदाहरण देते हैं। वाचम इति यहाँ वाचम अधिक है, वाच कहना ही पर्याप्त है, वाणी के अतिरिक्त और कोई क्या बोलेगा। कहीं कहीं विशेषण देने के लिए कोई पद प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे वाच इति यहाँ वाचम के बिना मधुराम या विशेषण नहीं आ सकता। वाणी की मधुरता बताने के लिए मधुराम विशेषण आवश्यक है और इसके लिए वाचम और विशेष आवश्यक है। अतः यहाँ उक्त दोष नहीं है। केचित इतु किन्हीं का तो यह मत है कि जहाँ विशेषण को क्रिया विशेषण बनाया जा सके वहाँ भी अधिक पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे उक्त वाक्य यूं बोला जा सकता है वाच मधुरम, अतः यहाँ भी वाचम का आवश्यकता नहीं। न्यून पदत्व का उदाहरण देते हैं। यदि यहाँ प्रथम चरण में तया पद न्यून है। पुनरुक्ता का उदाहरण रतील मिलंती दो बार आने से लीला शब्द यहाँ पुनरुक्त है। इसी प्रकार इसी का नाम कथित पदत्व है। कथित पदत्व का दूसरा उदाहरण जक्षुर इति यहाँ दूसरी बार विश शब्द के स्थान पर सर्वनाम का ही प्रयोग होना चाहिए। हृत इति जो छंद लक्षण के अनुसार होने पर भी सुनने में ठीक न लगे और जो छंद रस के विपरीत हो अथवा जिसके अंत में ऐसा लघु हो जो गुरु को प्राप्त न हो सके, ये तीन प्रकार के हतवृत्त होते हैं। क्रम से उदाहरण हंत इति आय इति ये छंद रस के ही अनुरूप हैं। किसी माननी के माना पनोदन के समय इसका काम नहीं। विकसित इति यहाँ प्रथम चरण के अंत में लघु वर्ण को गुरुत्व नहीं हो सकता। यत्पाद इति छंद शास्त्र के में पाद के अंतिम लघु वर्ण को भी गुरु मान लेने की जो व्यवस्था है वह केवल द्वितीय और चतुर्थ पाद के लिए है। प्रथम और तृतीय चरणों में तो केवल वसंत तिलक आदि छंदों के लिए ही है। यहाँ प्रमुदित इत्यादि पाठ करने से संयोग के आदिम वर्ण को गुरुत्व हो सकता है। दूसरा वर्ण अन्यायी इति गुरुजनों को उत्पन्न कर गुण रत्नों को उत्पन्न करने वाली और कोई और भी पृथ्वी है, वह धन मृतिका दूसरी ही है और वे साधन विलक्षण ही हैं, जिनसे विधाता ने इस युवक को बनाया है, जिसके देखते ही मन में मोहित हो जाने के कारण शत्रुओं के हाथ से शस्त्र, कामिनियों के निष्कम्बल से वस्त्र गिरने लगते हैं। अत्र इति, यहाँ वस्त्राणि च, इसमें बंध शिथिल हो गया है, इत्यादि वस्त्राण भी बना दिया जाए तो ठीक रहे। इसे काव्य प्रकाशकार ने अप्राप्त गुरुभांत लघुत्व का उदाहरण माना है। वस्तुतः यह छंद का अनुसार होने पर भी अश्रव्य है। वस्तुतस्तु इत्यादि कह विश्वनाथ जी की यह पंक्ति शिथिल है। यदि यह इनका अपना मत है तब तो इसमें इत्यंत ये नहीं करना चाहिए, और यदि दूसरों का ही मत है तो इनका नहीं, तब इसमें वस्तुतः लिखना अनुचित है। प्रोज्वल दिति, इस पद में अनुप्रास क्रम से गिरने लगा और अंत में बिल्कुल गिर गया है। वस्तुतः यह दोष नहीं प्रत्युत गुण है। क्रोध से भरे भयानक नृसिंह के वर्णन में विकट बंध और चतुर्थ चरण में आशीर्वाद के समय कोमल बंध बनाना उचित ही हुआ है। यदि यहाँ पातुओं के स्थान में भात्स्यव कर दे तो यह इस दोष का उदाहरण हो जाएगा। दलित इति एवं विधेयति, इस प्रकार प्रगृह संज्ञा आदि के कारण किया हुआ संधि भंग अनेक प्रकार के दोष पर दोष होता है, किंतु व्याकरण के विरुद्ध केवल छंदो भंग दूर करने के लिए एक बार किया हुआ संधि भंग भी दोषाधायक हो जाता है। जैसे वासव इति, चलंड इति, यहाँ चलन और डामर पदों की संधि करने से जुगुप्सा या ब्रीड़ा की अर्थ व्यंजक अश्लीलता प्रतीत होती है। अपभ्रंश भाषा में लंडा शब्द पुरुष का वाचक है। उर्व इति, यह वह पृथ्वी है जहाँ मरुस्थल के अंत में रमणीय अवस्थिति वाले वृक्ष पंक्ति है, यहाँ संधि करने से कठोरता आ गई है। इंदुर इति, इस पद में जगत का संबंध पूर्वार्थ के साधन वही साधन है, वही इसे पढ़ना चाहता है। दूसरे अर्थ में एक पद के चले जाने से यह अर्धांतरिक पद तो दोष का उदाहरण है। नास्यंत इति, यहाँ पदंति शशिनः पादाः, इस तीसरे चरण में वाक्य की समाप्ति में हो जाने पर फिर चतुर्थ पद में एक विशेषण उठाया है, इसके साथ अन्वय करने के लिए समाप्त वाक्य से विशेष वाचक पद को फिर से उठाना पड़ेगा, अतः वहाँ समाप्त पुनराग तत्व दोष है। किसी वाक्य के निराकांक्ष रूप से अन्वित हुए विशेषार्थ पद को अन्य विशेषण के साथ अन्वय करने के लिए फिर से उठाने का समाप्त पुनरावर्तत्व दोष होता है। जहाँ कवि का अभिमत संबंध न बन सके वहाँ अभवन मत संबंध दोष होता है। जैसे याइति, जो कामदेव की विजया लक्ष्मी है जिससे वह संसार सुभूषित है और जिस मृग नयनी के बिना ये मेरे प्राण व्यर्थ है, वह आज मुझे कहाँ से मिले। अत्र इति, यत और तत् शब्द का नित्य संबंध होता है, अतः यत शब्द से युक्त वाक्यों का तत् शब्द घटित वाक्य के साथ संबंध हो सकता है, क्योंकि ये दोनों परस्पर साकांक्ष रहते हैं। एक के साथ दूसरे की आकांक्षा सदा बनी रहती है, किंतु दो यत शब्द घटित वाक्यों का निराकांक्ष होने के कारण आपस में संबंद्ध नहीं हो सकता। प्रकृत पद्य में पूर्वार्ध के दो वाक्यों में एराक्षी शब्द का संबंध कवि को अभिमत है, किंतु बनता नहीं, क्योंकि तृतीय वाक्य जिसमें एक एराक्षी पद है वह यक्ष शब्द घटित होने के कारण पूर्वोक्त दोनों वाक्यों में निराकांक्ष है। यदि इस पद्य में क्योयम बिनाकांक्ष बिनामी इत्यादि रूप से पढ़े तो एणाक्षी शब्द तक शब्द घटित वाक्य के अंतर्गत हो जाने के उक्त वाक्यों के साथ संबंध हो सकता है। दूसरा उदाहरण इच्छसे इति, यहाँ यत पद का कालवाचक तदा पद के साथ संबंध नहीं बनता, क्योंकि यत से काल की प्रतीति नहीं होती। यदि यहाँ यत के साथ स्थान पर छेद लगा दे तो संबंध हो सकता है। अन्य उदाहरण जयोष्यन इति, चंद्रिका स्वच्छ जल है और तारे कुमुद है तथा आकाश रूपी कासार में चंद्रमा राज हंस है। यहाँ व्योम रूप कासार का संबंध चंद्रिका रूप जल और तार का रूप कुमुदों के साथ कवि और अभिमत है, किंतु उसका राजहंस के साथ समास कर देने से अब उतने अंश का उक्त पदों के साथ संबंध असंभव है। समास में घुणीभूत अंश किसी दूसरे पदार्थ के साथ स्वतंत्रता से संबंध नहीं रख कर सकता। यदि यह व्योम का सारे पाठ कर दे तो कोई दोष नहीं रहता है।
विधेय इति विधेय विमर्श दोष में जिस अंश का प्रधानता से परामर्श होनी नहीं होती वही दूषित होता है। किंतु यहाँ कासार शब्द का अर्थ ब्रगट तालाब ब्रगट बंद जो शब्द में प्रधान है समास के भीतर पड़ जाने के कारण प्रधानता से प्रतीत नहीं होता। अतएव पयापुरा आदि शब्द अर्थात अंग नहीं प्रतीत होते। इससे संपूर्ण वाक्य के अर्थ में विरोध प्रतीत भाषित होता है। इन दोनों का भेद है अनेन इति। हे परशुराम माता का कंठ काटने वाले तुम्हारे इस कुठार के साथ स्पर्धा करने में मेरा यह खड़ग लज्जित होता है। मेरे इन अनुपम कृपाण की स्त्री घाते मातृ घाते तुम्हारे इस परशु के साथ स्पर्धा ही क्या? क्या माता के कंठ का छेदन परशुराम की निंदा के लिए कहा गया है? परशु की निंदा के लिए नहीं, अतः परशु के साथ उनका संबंध करना उचित नहीं है। यहाँ प्राचीनों का मत है, आधुनिक आचार्य कहते हैं कि परशु की निंदा के द्वारा यहाँ परशुराम की अत्यंत निंदा प्रतीत होती है। अतः इस प्रकार का कथन कवि निपुणता का द्योतक है, दोषाधायक है। अक्रमता का उदाहरण समय इति। संसार में समय ही सबको सबल और दुर्बल बनाता है। यह बतलाते हुए मयूरों के स्वर को पुरुष करने वाली हंसों के द्वारा शरद ऋतु में रमणीयता को प्राप्त हुए। यहाँ समय एवं करोति बलाबलम इस वाक्य के अर्थ का इति शब्द से परामर्श कर किया गया है। अतः इसी परामर्श यमान वाक्य के अनंतर इति पद आना चाहिए। यहाँ न रखकर प्राणी गदंत के आगे उसे रखने से क्या यहाँ अक्रमता दोष हुआ है? इसी प्रकार दयम इति कपाल पाणी शंकर के समागम की अभिलाषा रखने वाली दो वस्तुएं इस समय सोचनीय है। एक तो वह चंद्रमा की कला और दूसरी लोचन चंद्रिका। तुम शिव के साथ पाणी ग्रहण की उत्कंठा से घोर तपस्या करती हुई पार्वती के प्रति बटुक वेश में छिपे हुई परीक्षार्थी शिव की यह उक्ति है। अत्र इति यहाँ तम पद के आगे क्षव पद शब्द रखना चाहिए था, क्योंकि उसी का चंद्रकला के साथ समुच्चय दिखाना है, लोक का नहीं। यहाँ जहाँ कोई अनिष्ट अर्थांतर प्रतीत होता है वहाँ अमत परार्थक का नामक दोष होता है। जैसे राम इति यहाँ श्रृंगार रस प्रतीत होता है वह प्रकृत रस का विरोधी होने के कारण अनिष्ट है। वाच्यान अभिधानम का उदाहरण व्यक्ति क्रमेति यहाँ अपि शब्द अवश्य कहना चाहिए था। न्यून पदत्व इति न्यून पदत्व दोष के वाचक पद की ही न्यूनता ली जाती है और अपि शब्द वाचक नहीं द्योतक है। प्रहार आहार संहार विहार और परिहार शब्द आदि शब्दों में प्र आदि उपसर्ग प्रकृति धातु अर्थ निष्ठ विशेषता में के ही द्योतक होते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी विशेष अर्थ के वाचक नहीं होते। यद्यपि व्याकरण के अनुसार सभी सुबंत और तिगंत पद कहते हैं, परंतु सुप्तिगंतम पदम यह नियम व्याकरण में ही आदरणीय हो सकता है, सर्वत्र नहीं। साहित्य में पद का लक्षण है वर्णाह पदम प्रयोग ग्राहान ननवितई का अर्थ बोधका। इसके अनुसार पद उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग के योग्य अनन्वित एक अर्थ का अभिधान करता हो। अपि आदिक शब्दों से में यह विशेषता नहीं होती, अतः वे स्वतंत्र रूप से मुख्य पद नहीं माने जाते हैं और इसी कारण उनके भाग अभाव में न्यून पदत्व नामक दोष भी माना जाना चाहिए। यही इन दोनों कोशों में परस्पर भेद है। एवं अन्यत्राप इति इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी जाना इसी कारण प्रकृत उदाहरण व्यतिक्रम लवम अथवा इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों का वाच्य अभिधान दोष माना जाता है। वस्तुतः विश्वनाथ जी का
यह कथन असंगत है। यदि यह मान लिया जाए कि केवल द्योतक शब्दों की न्यूनता में ही वाच्य अनविधान दोष होता है, वाचक पद की न्यूनता में यह नहीं होता, तो इस दोष की दूसरा उदाहरण जो स्वयं विश्वनाथ जी ने दिया है असंगत हो जाता। चरण अनत कांतया, इस वाक्य में विश्वनाथ जी ने असी पद की न्यूनता के कारण वाच्य अनविधान दोष बताया है, परंतु असी क्रिया है इति इसका वाचक होना निर्विवाद है। फिर इस वाचक पद के अभाव में यह दोष कैसे हुआ? यदि विश्वनाथ जी के शब्द में ही कहा जाए तो इनका यह कथन स्ववचन विरोधा देवतास्पातम है। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ जी का प्रकृत कथन प्राचीन आचार्यों से भी विरुद्ध है। काव्य प्रकाशकार ने इसी दोष के उदाहरण में लिखता है, अप्राकृतस्य चरित अतिशयस्यैश्च दृष्टैरत्यद्भूतैर अपहृतस्य तथापि नास्था अत्र आपहितोस्मि इत्यपहितस्य त्वस्य विधिर्वाच्यः। इस उदाहरण में अस्मि की न्यूनता ने यही दोष माना है। अस्मि क्रियावाचक ही है, द्योतक नहीं, अतः यह कहना असंगत है कि केवल द्योतक पद की न्यूनता में यह दोष होता है। वस्तुतः न्यून पद दोष वहाँ होता है जहाँ किसी पद की न्यूनता हो और उसके रख देने मात्र से दोष दूर हो जाए, परंतु वाच्य अनविधान दोष वहाँ होता है जहाँ किसी न्यूनता के कारण वाच्य अर्थ के उपन्यास की शैली कहने का ढंग दूषित हो गया हो। इसमें इसी पद के रखने देने मात्र में काम नहीं चलता, अपितु अन्य प्रयुक्त पदों में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है। काव्य प्रकाश में उक्त उदाहरण में केवल अस्मि पद रख देने से काम नहीं चल सकता, वहाँ अपहृतस्य को बदलकर अपहृतः यह भी बनाना पड़ता है। काव्य प्रकाश का दूसरा उदाहरण है, एसो अहम धृतनय आ मुख पद्म जन्मा प्राप्त सुरासुर मनोरथ दुर्वर्ति अत्र मनोरथानामपि दुर्वर्तित्य अर्थो वाच्यः। इसमें भी अपि शब्द रखने के साथ ही मनोरथानाम बनाना भी आवश्यक है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण, काम पराधवलवम मम पश्यसी त्वजसी मानिनी दास जनम यतः अत्र अपराधस्य लवम असि इति वाच्यम्। यहाँ भी अपि शब्द रखने के साथ ही समास को छोड़कर अपराधस्य यह पृथक पद रखना आवश्यक है। विश्वनाथ जी ने इस पद को तोड़ मरोड़ कर अपना उदाहरण बनाया है, परंतु यह उसकी समझ में नहीं आया कि यहाँ समास का त्याग करना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपराधालवम कम में विक्ष वाक्षांसी नहीं कुप्यसी, इसमें यदि केवल अपि शब्द रखकर उसे अप्रधान किया जाए, विक्ष के साथ जोड़ दिया जाए, तो वह वाक्य और भी शिथिल तथा विसंठुल हो जाएगा। काव्य प्रकाश का उदाहरण यह ठीक है, उसमें प्रधान या पश्यसी के साथ अपि का संबंध होता है और समास छोड़कर अपराधस्य लवम पाठ बनाया। दूसरा उदाहरण चारण इति, यहाँ असी अवश्य कहना चाहिए, चरणांत कांतासी ऐसा पढ़ना चाहिए जिसका जिस क्रम में प्रारंभ किया है उसका अंत उसी क्रम में निर्वाह करना चाहिए। यदि इस क्रम का भंग हो तो मग्न परक्रमता दोष होता है, जैसे एवं इति। यहाँ उक्त में वाच्य धातु के पराक्रम किया गया है, अतः प्रतिवचन में भी उसी धातु का रूप देना चाहिए, भाषा धातु की नहीं। एवं उक्तो मंत्रे मुखैः रावणः प्रचोद प्रत्ययोचत, ऐसा कहना उचित है। इस प्रकार कहने से यहाँ कथित पदत्व दोष नहीं होगा, क्योंकि वह वही होता है जहाँ उद्देश्य प्रति निर्देश भाव न हो। यहाँ तो वचन और प्रतिवचन का उद्देश्य प्रति निर्देश भाव है। उद्देश्य प्रति निर्देश निर्देश भाव तीन प्रकार का होता है, एक वह जहाँ किसी एक विषय विधेय के उद्देश्य रूप से अन्वित पदार्थ को दूसरे विधेय में उद्देश्य रूप से अन्वित करने के लिए फिर ग्रहण करें, जैसे हृदय इति। यहाँ उदय काल से पहले सूर्य का ताम्रत्व विधान किया है। उदय कालिक ताम्र विधि में पहले सविता उद्देश्य हुआ, फिर वहाँ अस्तकालिक ताम्र विधि का उद्देश्य बनाया गया है, अतः यहाँ कथित पदत्व नहीं हो सकता। यहाँ श्री तर्क वागीश जी ने लिखा है, एक विधेयार्थम उद्देश्य विद्येयांतरे प्रति निर्देश इत्येक यथा उदेत इति यत्रोदय कालीन ताम्रत्व अभिधायम उदिष्ठस्य सवितुरस्तस्मय कालीनम ताम्रम अत्व विधायम उदेश्यस्तया प्रति निर्देश। किंतु यह उपादन असंगत सवित असंगत है। यदि यह ताम्रत्व का विधेय के अंतर्गत माने और उद्देश्य केवल सविता को हो तो इस उपादन के अनुसार सविता पद की पुनरुक्ति निर्दोष मानी जा सकती है, परंतु वह इस पद में है ही नहीं। यहाँ तो ताम्र की पुनरुक्ति है, उसका समर्थन इस उपादन में नहीं हो सकता। अतः यहाँ ताम्र को उद्देश्य कोटि में ही अंतर्गत मानना चाहिए, विधेय कोटि के अंतर्गत नहीं। दूसरा, वह यहाँ किसी एक उद्देश्य करते करके विहित पदार्थ का भी फिर दूसरे उद्देश्य के लिए विधान किया जाए, जैसे एव मुक्त इत्यादि। यहाँ पहले मंत्रियों को उद्देश्य करके वचन का विधान है, फिर रावण को उद्देश्य करके उसी का पुनर्विधान या प्रति निर्देश है। एको दृश्येन विहितस्यो दृश्यांतरे विधेयतया प्रति निर्देश इत्यपरः। तीसरा, यह जहाँ किसी एक के उद्देश्य के विहित पदार्थ अन्य विधेय का उद्देश्य हो जाए, जैसे भिता भू पत्यापाम सच प्रतिरपाम योजन सतम। यह पहले पृथ्वी को उद्देश्य करके अपामपति समुद्र का विधान है, अनंतर उसी का योजन सतिविति विधि में उद्देश्यतया संबंध किया गया है। एको दृश्येन विहितस्य विधेयांतरे विहितस्तया प्रतिनिर्देशः इति तृतीयः। यथा मीताः भूः पश्चापाम सच पतीरपाम योजनसतम इति अत्र पृथिव्युदेशेन विहितास्यपाम पत्युर योजनशत विधूषा बुद्धस्य तया प्रतिनिर्देशः। यह मत श्री तर्कवागीश जी का है, परंतु यहाँ भी समन्वय असंगत है। प्रकृत वाक्य में अपापांतिकृत भूकर्मक मान क्रिया विधेय है, कर्ता कभी विधेय नहीं हुआ, कर्ता और कर्म कभी उद्देश्य नहीं हुआ, अतः पृथ्वी को उद्देश्य और अपामपत्ति को विधेय बताना असंगत है। वस्तुतः उदाहरण भी प्रथम लक्षण के ही अंतर्गत है। चंडीदास ने उद्देश्य प्रति निर्देश भाव का अर्थ किया है, उद्देश्यो अन्युद्यः स एव प्रति निर्देश्यः प्रतीतिमा अन्यर्थ परिहारार्थम पुनर्विधेयो यत्र सः। उद्देश्य प्रति निर्देश भाव के एक शब्द की दूसरी बार प्रयोग करना दोषाध्यायक नहीं होता, इस बात को मूल का उदाहरण देकर पुष्ट करते हैं। उदेत इति, यहाँ यदि उत्तर वाक्य में ताम्र के स्थान पर रक्त या स्वर्ण पद रख दे तो वही पदार्थ दूसरे पद के अभिहित होने के कारण अन्य सा पदार्थ प्रतीत होते लगता है और एकाकार प्रतीति को दबा देता है। अतः उक्त उदाहरण में वचधातु रूप प्रकृति का परक्रम भंग हुआ है। प्रातिपदिक सर्वनाम का भग्न कर्मत्व दिखाते हैं ते इति। यहाँ तीसरा चरण में इदम शब्द से हिमालय का निर्देश किया है, अतः चतुर्थ चरण में भी उसी शब्द से या उसके समानार्थक एतद और अदस शब्द से उसका परामर्श करना चाहिए था, तत् शब्द से नहीं। वस्तु अस्तु अदस शब्द तत् शब्द का समानार्थक है, इदम का नहीं। अन्य उदाहरण उदन्वम इति, यहाँ पहले उदन्वत शब्द से समुद्र का निर्देश किया, फिर उसी का अपामपति ही शब्द से प्रतिनिर्देश किया, अतः भग्न प्रकरमत्व का है। मीता भू इत्यादि पाठ करने से यह दोष हट जाता है। यहाँ सर्वनाम प्रतिपादिक का कर्म भंग है। प्रत्यय के कर्म भंग का उदाहरण यस इति, यहाँ तुमन प्रत्यय के पराक्रम से हुआ है और अंत्य में भी वही है, अतः बीच में भी सुखम हितुम ऐसा होना चाहिए। अत्र इति, यहाँ पहले दो उदाहरणों में प्रकृतियों का क्रम भिन्न हुआ है। उदन्वत में पर्याय का एवं प्रकृत में पद्य का क्रमाभेद है, इसी प्रकार अन्य भी जानना। प्रसिद्धि के त्याग का उदाहरण घोर इति, मेघों के शब्द को रव नहीं कहते, गर्जित स्तनित आदि कहते हैं। रोग तो मंडुकों का होता है, जैसे कहा है मंजिर इति, मंजिर आदि के शब्दों को रणित आदि शब्दों से कहते हैं। पक्षियों के शब्द के लिए कुंजित आदि शब्द आते हैं। सूरत के शब्द के मणित आदि से निर्देश होता है और मेघ सिंह आदियों के लिए गर्जित आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अनुचित स्थान में किसी पद को रखने से अस्थान पदत्व दोष होता है, जैसे तीर्थ इति। यहाँ तदीय शब्द में तत्पद से गंगा का परामर्श किया है, अतः उससे पूर्व गंगा पद को अवश्य आ जाना चाहिए, क्योंकि सर्वनाम के पूर्व का परामर्श होता है। हिताद इति, यहाँ श्रेणुरेत सुश्रेणुते के साथ नय का संबंध है, अतः उसी के पूर्व में उसे रखना चाहिए। अत्र च इति, यद्यपि यहाँ एक ही पद अस्थान में स्थित है, तथापि उससे संपूर्ण वाक्य अपने अर्थ के बोध के शिथिल हो सक गया है, अतः वह वाक्य दोष है। इह के अप इति, कोई कहते हैं कि पद शब्द से यहाँ वाचक पदों का भी ग्रहण होता है और नए समास को जब सब लोग वाचक मानते हैं, नहीं यह बिना विवाद के स्वतंत्रता से अर्थबोधक नहीं माना जाता। अतः द्वयम् गतम्, इस पद में छह शब्द की तरह प्रकृत पद्य में न शब्द के स्थान से स्थित होने पर भी अक्रमत्व दोष होता है, अस्थानत्व नहीं। स्थान के समय में समास करने का उदाहरण अद्य इति, चंद्रमा उदय के समय लाल होता है, उसके उदय होने पर खिले हुए कुमुदों में से दिन भर के बंद भ्रमरण पक्ति बांध कर निकल जाते हैं। इसी स्वरूप पर प्रकृत पद्य में उत्प्रेक्षा और रूपक की रचना की गई है। अर्थ, अब भी ब्रकट कामदेव के प्रधान सेनापति चंद्र के उदय होने पर भी ब्रकट बंद, स्तन रूप पर्वतों से दुर्ग और विषम कामनियों के हृदय में यह मान रहना चाहता है, इसी क्रोध के मारे मानो लाल हुआ यह चंद्रमा दूर तक कर फैलाए खिलते हुए कुमुदों के कोष में से भ्रमर पक्ति रूप तलवार खींचता है। अत्र इति, यहाँ पूर्वार्ध में क्रोधी चंद्रमा की उक्ति है, वहाँ तो समास नहीं किया है, और उत्तरार्ध में जहाँ कवि की उक्ति है वहाँ कठोरता दो तक लंबा समास किया है, अतः यहाँ अस्थानस्थ समासत्व दोष होता है। वाक्यांतर इति, दूसरे वाक्य के पद यदि दूसरे वाक्य में घुस पड़े तो संकीर्णत्व दोष होता है, जैसे चंद्रमा इति, यहाँ चंद्र का संबंध पश्य के साथ है और मुंच का मानम के साथ। अत्र इति, यहाँ नमो भंगने इत्यादि पाठ ठीक क्लिष्ट एक ही वाक्य में होता है, अतः वह रस से भिन्न है। एक वाक्य में यदि दूसरा वाक्य पूर्ण रूप से घुस पड़े तो गर्भितत्व दोष होता है, जैसे रमणे इति, जहाँ बदामि सखी ते तत्त्वम्, इस वाक्यांतर के बीच में अघुसा है। संस्कृत, अपुष्टद सुकरम ग्राम्यम व्यवहताश लील कष्टता अनविकृत हेतुर प्रकाशितार विरुद्धता संदिग्ध पुनरुक्तत्वे ख्याति विद्या विरुद्धत्वे सकांक्षता सहचर भिन्नता सस्थान युक्तता अविशेषे विशेषश्चा नियमे नियमस्तथा तयोह विपर्ययो विघ्ननुवादा युक्तते तथा निर्मुक्त पुनरुक्तत्व अर्थदोषाः प्रकृतिताः तद्विपर्ययोः विशेष विशेषो नियमे अनियमः अत्रापुष्टत्वं मुख्यनु उपकारकारित्वं यथा विलोक्य वितते व्योन्नि विधुमुञ्च रूषं प्रिये अत्र वितते वितत शब्दो मानत्यागं प्रतीन किञ्चिद् उपकुरुते अधिक पदत्वे पदार्थ अन्वय प्रतीतेः समक कालमेव बाध प्रतिभाषा यह तु पश्चाद इति विशेषः दुष्क्रमता यथा देहि मे वाचिनः राजन् गजेन्द्रवा मद पदालसम् अत्र गजेन्द्रस्य प्रथमं याचनम् उचितं स्वापिहि त्वं समीपे मे स्वं पिम्मे वधूनां प्रिये अत्रार्थो ग्राम्यः कस्यचित् प्रागुत्सर्गः अपकर्षः वाद् विधाय पश्चाद् अन्य प्रतिपादनं बहितत्वं यथा हरन्ति हृदयं यूनामन नन्वेन्दु कलादयः विक्षते यैर्यं तन्वी लोकलोचन चन्द्रिकाः अत्र एषामिन्दकुलाः नन्दानन्दहेतुस्तेष एवानन्दायः तन्वव्याश्चन्द्रिकात्वारोपः हन्तुम् एव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरणैषिणः यथा सुजायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः अत्रार्थो श्लील वर्षत्येतदर्पितं तु घनो धामस्तमक्षं यस्पयः सत्यं सा सवितुः सूता सुरशरित्पुरो ययाप्लावितः व्यासस्योक्तिषु विश्वसीत्यपि न कः श्रधानकस्य श्रुतौ न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणे भाष्वं मनि मरिचिष्वपः अत्र यस्मात्सूर्याद्विषेर्यमुना याश्च प्रभवस्तस्मादस्योर्जलमपि सूर्यप्रभवं ततश्च सूर्यमरीचिनां जलप्रत्ययहेतुत्वम् ऊचितं तथापि मृगे भ्रान्तवात्तञ्जलप्रत्ययनं करोति अयं प्रस्तुतो वर्थो दुर्बोधः दुरे च अस्मात् प्रस्तुता अर्थबोधः इति कष्टात् अर्थत्वम् सदा चरति खे भानुः सदा हवति मारुतः सदा धृते भुवं शेषः सदा धीरो विकथनम् अत्र सदित्यन अविकृतम् अत्रास्य पदस्य पर्यायान्तरेणोपपादानि अपि यदि नान्यद्युच्छेद् इत्यन्तरः तादात्स्य द्वेषदोषस्य सद्भाव इति कथित पदत्वाद्भेदः नवीनकृतत्वं यथा भानुः सकृदि तुरंग एव रात्रिदिवं गन्धवः प्रायति बिभ्रति द्वेषेशः सततं धारित्री षष्ठान् सवृत्तेरपि धर्म एषः गृहीतं एनासिः परिभव भयान्नोचित अपि प्रभावाद्यस्वभुन् खलु तव कश्चिन विषयः परित्यक्तं तेन त्वम् असि सूतशोकान् तु भयाद्यमोक्षे शस्त्र त्वामहसि एते स्वास्ति भवते अत्र द्विशस्त्रमोचने हेतुर्नुक्त इति निर्हेतुत्वम् कुमारस्ते नराधीश श्रियं समाधिगच्छतु अत्र त्वं मिश्रस्व इति विरुद्धार्थ प्रकाशन्य प्रकाशितं विरुद्धत्वम् अचला अबला वाश्युः सेव्यावृत मनीषिणः अत्र प्रकर्षणा भावाच्छान्त श्रृङ्गारिणो को वक्तेति निश्चया भावत्वसन्दिग्धत्वं सहसा विदर्धितः न क्रियाम् अविवेकः परमां पदां पदः विणीयते हि विमृश्यकारिणां गुणलुब्धाः स्वयम् एव सम्पदः अत्र द्वितीयार्धे वृत्तेकेण द्वितीयपादस्यैव वार्थ इति पुनरुक्ता प्रसिद्धि विरुधत्ता यदा ततश्चार समरे सित सुलोधरो हरिः अत्र शरेशूलं लोके प्रसिद्धम् इति प्रसिद्धं न त्वङ्कुरः इति कविसमयख्यातिर्विरुधा अधरे करजञ्छत मृग्यादयः अत्र श्रृङ्गारशास्त्रविरुद्धत्वाद्विरुद्धत्ता एव मन्यस्त्रशास्त्रविरुद्धत्वम् अपि एषं शेषस्य धनुषो भङ्गच्छत्रस्य एव समुन्नतिं स्त्रीरत्नं च कथं नाम मृश्यते भार्गववधुना अत्र स्त्रीरत्नम् उपेक्षितम् इति सकाङ्क्षत सज्जनो दुर्गतौ मग्नः कामिनी गलितस्तस्तनि खलः पूज्यः समाज्यां तपाय मम चेतसः अत्र सजनकामिनी च शोभनौ तत्सहचरः खलो अशोभने इति सहचरं मिनन्त्वम् आज्ञाः शक्रशिखां मणिप्राणैनी शास्त्राणि चक्षुर्नवं भक्तिरभूतपौ पिनाकिनीं पदं लङ्केति दिव्यां पुरि उत्पादयतु हिरण्यन्वय च तदहोदद्विन्नग्रयोः लभन्ते स्याच् देशः नरावणः क्व नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः अत्र न रावण इत्येतावत समाप्यम हिरकाणम निधेरस्य सिंधो किम वर्णयामहे अत्र रत्नानां निधेरित्यम अविशेषः एव वाच्यः आवर्तयेव नाभिस्ते नेत्रे नील सरोरुहे भांगश्च वलस्यस्तेन त्वं लावण्यांबु वापिका अत्रावर्त एवेति नियमो न वाच्यः यान्ति नीलनीचोलिन्योः रजनिश्वभाषी विसारिका तत्र तमिस्त्राश्विति रजनी विशेषो वाच्यः अपातसुरसे भोगे निमग्नाः किं न कुर्वति अत्र अपातैवेति नियमोः वाच्यः ननो वाच्यस्याभिधाने व्यतिकर्मबलम् इत्यादपरो अपेरभावः इह चैव कारष्यति को अनु भेदः अत्राह नियमस्य वचनम् एव पृथग्भूतम् नियमपरिवृते विषय इति तत्र तथा सत्यपि द्वयोः शब्दार्थ दोषतायाम् नियमाकभावात् तत्का कतिरिच्चेत व्यतिक्रमवलम् इत्यादौ शब्दोच्चारणन्तरमेव दोषप्रतिभासः इह त्वर्थ प्रत्यन्तम् अर्थिमिति विभेदः एवं च शब्दपरिवृतिसहत्वा सहत्वाभ्याम् पूर्वैराध्योरपि शब्दार्थदोषविभाग एवं पर्यवस्तीयो दोषः शब्दपरिवृत्यसह शब्ददोष एव यश्च पदार्थान्वय प्रतिपूर्वबोध पूर्वबोध बुद्ध्यः सोऽपि शब्ददोषः यश्चार्थ प्रतीत्यन्तम् बुद्ध्यः सोऽर्थश्च इति एवं च अनियम् परिवृत्तत्वादेरप्याधिकपदम् वादिभेदोः बुद्ध्यभ्यम् अमत्परार्थत्वे तु राम मन्मत्सरेण इत्यादौ नियमेन वाच्य व्यापित्वाभिप्रायाः वाक्यदोषता असलीलत्ववादौ तूननियमेन वाक्यत्यापि त्वम् आनन्देष्वपक्षोऽसौ परपक्षान् हनिष्यति अत्र परपक्षम् हत्वा स्वपक्षमानन्दम् इष्यति इति विधेयम् चण्डेशचूडाभरणम् चन्द्रलोकम् विरहितताहरणम् तदर्थयमानवृथा अत्र विरहिणा उक्तौ तृतीयपादस्यार्थो ननुवाद्यः लग्नम् रागावृताङ्गयाः सुदृढम् इह ययैवासिष्ठय अङ्किछे मातङ्गानामव्यूपरि परपुरुषर्या च दृष्टा पतन्ति तत्सक्तो अयम् न किञ्चित् गणयति विदितम् तोते अस्तु तेनास्मि दताः भृतेभ्यः स्त्रीनियोग्दा गदितुम् इति गते वाम्बुधिः यस्य कृतिः अत्र विदितम् ते अश्विष्टेन समापितम् अपि वचनम् तेनित्यादिनाम् पुनरुत्पातम् अत प्रशोधनाः
हिन्दी अर्थ के दोष दिखाते हैं अपुष्ट इति अपुष्टत्व दुष्कर्मत्व ग्राम्यत्व व्याहतत्व असलीलत्व कर्मत्व अनविकृतत्व निर्हेतुत्व प्रकाशित विरुद्धत्व संदिग्धत्व पुनरुक्तत्व ख्याति विरुद्धत्व विद्या विरुद्धत्व साकांक्षत्व सहचरभिन्नत्व अस्थानयुक्तत्व अविशेष में विशेष अनियम में नियम विशेष में अविशेष नियम में अनियम विद्ययुक्तत्व अनुवादयुक्तत्व और निर्मुक्त पुनरुक्तत्व ये सब अर्थ के दोष होते हैं। अत्र इति जहाँ कोई पदार्थ मुख्य अर्थ का उपकारी न हो वहाँ अपुष्टत्व नामक दोष अर्थ दोष होता है। जैसे विलोक्य इति यहाँ वितत शब्द मान त्याग में उपकारी नहीं है। जैसे उद्दीपक होने के कारण चंद्रोदय मान त्याग का हेतु है वैसे आकाश का विस्तार उपयोगी नहीं। अधिक पदत्व में पदार्थ के अन्वय के साथ ही बाद का ज्ञान हो जाता है किंतु यहाँ अन्वय के पीछे बाद की प्रतीति नहीं होती। जहाँ वस्तुओं का क्रम बिगड़ता हो वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है जैसे देह इति, यहाँ हाथी के पहले मांगना चाहिए दांत के सौकर्य के लिए या अपना संतोष प्रकट करने के लिए दूसरा विकल्प किया गया है। जो घोड़ा नहीं दे सकता वह हाथी कैसे दे सकता है। स्वपीह इति, यहाँ अर्थ ग्राम्य है, परंतु पहले किसी वस्तु का उत्कर्ष या अपकर्ष दिखाकर अनंतर उसके विपरीत कथन करने से व्याहतत्व दोष होता है। जैसे हरंति इति, जिन लोगों को चंद्रमा की नूतन कला आनंद नहीं देती उन्हीं को आनंदित करने के लिए यहाँ प्राकृतिक कामिनी में चंद्र का तत्व का आरोप किया है, अतः यह अर्थ व्याहत है। हंतुमैति, जो मारने को ही प्रवृत्त है, अकड़ा हुआ है और छिद्रान्वेषण करता रहता है, उसे क्रूर का जितना जल्दी पतन होता है उतनी जल्दी फिर उन्नति नहीं होती। यहाँ शिष्ण रूप लज्जा व्यंजक अश्लील अर्थ पतित प्रतीत होता है। वर्षित इति, अपनी किरणों द्वारा खींचे हुए और अपने धाम में स्थित स्वच्छ जल को वर्षा सूर्य मेघ नहीं करता, सूर्य करता है। और वहीं यमुना भी सूर्य की पुत्री है जो गंगा को आप्लावित करती है। व्यास की इन बातों पर किसे विश्वास नहीं और श्रुति में किसकी श्रद्धा नहीं, परंतु फिर भी मूढ़हरिणी सूर्य की किरणों में जल का विश्वास नहीं करती। अत्रैति, जब यमुना और वर्षा दोनों सूर्य से ही उत्पन्न होती हो तो उनका जल भी सूर्य से ही उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए सूर्य की किरणों में जल का ज्ञान होना ठीक ही है। तो भी भ्रांत होने के कारण हरिणी उनमें जल का विश्वास नहीं करती। यह अप्रस्तुत अर्थ भी यहाँ दुर्बोध है। उससे मुग्धा नायिका पर नायक पर अविश्वास रूप प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना तो दूर की बात है, अतः यहाँ कष्टार्थत्व दोष होता है। सदेत इति, यहाँ चारों चरणों के सदा पद पढ़ा है, उसका कोई नवीनता नहीं हुई, अतः यहाँ अनविकृत तत्व दोष है। अत्रास्य इति, यदि दूसरी बार आए हुए उसी शब्द का दूसरा पर्याय रख दे तो कथित पदत्व दोष हट जाता है, किंतु यहाँ सदा पद के पर्याय रख देने पर भी यदि कोई चमत्कार न हो तो अनविकृतत्व बना रहे ही रहता है। यही नहीं, इन दोनों का परस्पर भेद है। यहाँ मूल में अन्य पद अधिक है, विचित्यंतरम से ही अन्वय का ज्ञान हो जाता है, उससे अधिक की आवश्यकता यहाँ नहीं। नवीनकृत पैदा करके उक्त दोष कैसे हटाया जा सकता है, इसका उदाहरण दिखाते हैं। मानुर इति, यहाँ तीनों चरणों में बात का स्वरूप बदल दिया है। निर्हेतुत्व का उदाहरण गृहितम इति, द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुनने पर अश्वत्थामा की उक्ति है, हे शस्त्र, ब्राह्मण धर्म के योग्य न होने पर भी जिन पिता ने तुम्हें पराभव के भय से ग्रहण किया था और उनके प्रताप से तुम्हारी गति भी कभी भी रुकी नहीं थी, उन पिताजी ने तुम्हें पुत्र शोक से छोड़ा, भय से नहीं छोड़ा। हे शस्त्र, अब मैं भी तुम्हें छोड़ता हूँ, जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। अत्रैति, यहाँ अश्वत्थामा के शस्त्र छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया, अतः यह निर्हेतुत्व नामक अर्थ दोष है। जैसे द्रोणाचार्य के शस्त्र त्याग का कारण पुत्र शोक बताया जाता है, वैसे ही अश्वत्थामा के शस्त्र परित्याग का भी कोई कारण बताना चाहिए था। कुमार इति, हे राजन, आपके कुमार राज्य लक्ष्मी पाए, यहाँ तुम मर जाओ, यह विरुद्ध अर्थ भाषित होता है, क्योंकि राजा के जीते हुए जी सुकुमार को राज्य लक्ष्मी नहीं मिल सकती, अतः यहाँ प्रकाशित विरोधत्व दोष होता है। अचला इति, हे बुद्धिमान लोगों, बताओ कि पर्वत और स्त्रियों में कौन सेवनीय है। यहाँ प्रकरण तो कोई है नहीं, अतः यह निर्णय करना कठिन है कि वक्ता शांत है या श्रृंगारी। इस कारण अर्थ में संदिग्ध धत्व दोष है। सहसा यहाँ उत्तरार्ध में द्वितीय पाद का अर्थ ही व्यतिरेक से निर्दिष्ट किया गया है। अविवेक से आपत्ति आती है। इस दूसरे चरण का विपरीत अर्थ यह होगा कि विवेक से सम्मति होती है, यही उत्तरार्ध में कहा गया है। अतः यहाँ अथ पुनरुक्ति दोष है। प्रसिद्धि विरुद्धत्व का उदाहरण ततई इति। अनंतर समर और शुभ्र शूल लिए हुए विष्णु घूमने लगे। विष्णु का शूल धारण करना प्रसिद्ध नहीं है। विष्णु का चक्र और चक्र का त्रिशूल, शंकर का त्रिशूल प्रसिद्ध है। यहाँ लौकिक प्रसिद्धि का विरोध है। पदघात इति। रमणियों के पदघात से शोक अशोक में पुष्पोद्गम होना ही कवि संप्रदाय के प्रसिद्ध है। अंकुर निकलना नहीं, यहाँ कवि समय की प्रसिद्धि का विरोध है। अधर इति। यहाँ काम शास्त्र का विरोध है। अधर में दंतक्षत का विधान काम शास्त्र में है, नक्षत का नहीं। यह विद्या विरुद्ध है। इसी प्रकार अन्य शास्त्रों का विरोध का उदाहरण भी जानना। यशस्य इति। यहाँ रत्नी रत्नम में आगे उपेक्षितुम पद की आकांक्षा होने से साक्षात दोष है। सहचर भिन्नता का उदाहरण सज्जन इति। यहाँ सज्जन और कामिनी शोभन है, किंतु उनके साथ पढ़ा हुआ खल अशोभन है। स्थान युक्तत्व का उदाहरण आज्ञयति इति। सीता स्वयंवर में लक्ष्मण के प्रति श्री रामचंद्र की युक्ति है। इसकी आज्ञा इंद्र की मुकुटमणियों तक पहुंचने वाली है, अर्थात इंद्र भी इसकी आज्ञा का पालन करने को विवश है। सब शास्त्र इसके नवीन चक्षु है, अर्थात यह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। शिव में इसकी भक्ति है। रहने का स्थान दिव्य लंकापुरी है और उत्पत्ति ब्रह्मा जी के वंश में है। यदि यह रावण न होता तो वस्तुतः ऐसा वर मिलना कठिन था, परंतु सब के सब गुण कहाँ होते हैं। रावण के प्रति उपेक्षा दिखाना इस पद में अभिष्ट है। अतः साचेदेश नरावण यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। अगला अंश स्थान के प्रयुक्त है। उससे रावण की उपेक्षणीयता कम हो जाती है। फिर काणम इति। समुद्र के लिए सामान्य से रत्न निधि ही कहना चाहिए। यहाँ हिरकाणाम यह अविशेष में विशेष कहा है। वस्तुतः हिरकाणाम कहना आयुक्त है, क्योंकि हीरे समुद्र में नहीं होते, खान से निकाले जाते हैं। अतः यह यहाँ पर अविशेष विशेष का उदाहरण असंगत है। इसके स्थान पर विद्रुमाणम निधे पाठ होने से यह उदाहरण ठीक हो सकता है, क्योंकि मूंगे समुद्र में ही उत्पन्न होते हैं। आवर्त एवेति। यहाँ एव शब्द से नियम करना अनुचित है। यान्ति इति। इसमें कृष्ण भिसारिकाओं का वर्णन है, अतः काली रात्रि का वाचक तमिश्रा आदि शब्द बोलना चाहिए। यहाँ विशेष के स्थान में सामान्य वाचक रजनी शब्द बोला है। आपात इति। यहाँ नियम करना चाहिए, आपात एवं बोलना ठीक है। वस्तुस्तु समास के में के भीतर एवं शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आपात रमणीयम में आपाते एवं रमणीय अर्थ होता है, उसी प्रकार आपात सुर से का भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त समास युक्त पद में एवं का जोड़ना भी संभव है। अतः आपाते सुर से भोगे इस व्यस्त प्रयोग में ही यह दोष का उदाहरण हो सकता है, समस्त प्रयोग में नहीं। ननवीति। प्रश्न। पाचन विधान के में पूर्वोक्त उदाहरण व्यतिक्रम लव इत्यादि पद में अपि शब्द का अभाव है और यहाँ एव शब्द का अभाव है, फिर इन दोनों दोषों को एक ही क्यों न माना जाए। शब्द का कभी दोनों जगह एक सी है, इसमें दोष क्या है। यहाँ कोई समाधान करता है। नियमस्य इति। जहाँ नियमवाचक शब्द का अभाव हो वहाँ नियम प्रवृत्ति नामक दोष होता है और अन्यत्र वाच्यन विधान दोष होता है। तत्र इति यहाँ खंडन करते हैं। तथा सत्यप इति। यह बात मान लेने पर भी वाच्यन विधान
को दोष शब्द दोष और नियम परिवर्त को अर्थ दोष मानने का कोई कारण नहीं रहता। जब केवल इतना ही भेद मानते हो तो दोनों एक से ठहरेंगे, एक शब्दगत और दूसरा अर्थगत कैसे होगा। तस्का गतिर इति। अच्छा तो फिर क्या उपाय है, इसके मत से समाधान करते हैं। व्यतिक्रम इति। वाच्यन अभिधान और में शब्दोच्चारण के अनंतर ही दोष की प्रतीति हो जाती है और प्रकृति दोष में अर्थ ज्ञान के अनंतर दोष का ज्ञान होता है, यही इन दोनों का भेद है। एवं चेति। प्राचीन आचार्यों ने शब्द और अर्थ के दोषों का विभाग इस प्रकार माना है कि जो दोष शब्द के परिवर्तन को न सहन करे अर्थात उसी शब्द के साथ लगे रहे, उसका पर्याय यदि उसके स्थान पर रख दिया जाए तो वह दोष न रहे, वह शब्द दोष होता है। और जो दोष किसी भी पर्याय के बदलने पर न हटे वह अर्थ दोष होता है। यह विभाग अब इस रूप में परिणत होता है कि जो दोष शब्द के परिवर्तन को नहीं सहन करता अर्थात उस शब्द के बदल देने से वह दोष नहीं रहता तो उसे शब्द दोष मानना चाहिए, और जो पदार्थों के अन्वय ज्ञान से प्रतीत हो जाए उसे भी शब्द का ही दोष मानना चाहिए। किंतु जो दोष अर्थ ज्ञान के अनंतर भाषित हो वह अर्थ दोष होता है। इसी प्रकार अनियम परिवृत्त अर्थ दोष की अधिक पदत्व नामक दोष शब्द दोष में भेद जानना। अमत परार्थत्व नामक दोष यद्यपि परार्थ ज्ञान के अनंतर भाषित होता है तथापि यह नियम से वाक्य में ही रहता है। राममन्यम अथ इत्यादि वाक्यों में ही उसकी स्थिति रहती है। इसी प्रकार इसी कारण से उसे वाक्य दोष माना है, अर्थ दोष नहीं माना। अश्लीलत्वादि ऐसे नहीं होते जो केवल वाक्य में ही रहे। आनंद इति। यहाँ विधि आयुक्त परपक्ष का हनन किए बिना स्वपक्ष का आनंदित करना संभव नहीं, अतः परपक्षम निहतस्यैव स्वपक्षम नन्दयिष्यति। इस प्रकार विधि करनी चाहिए। चंडिस इति। यह विरही की उक्ति है। चंद्रमा ने कदर्थन न करने दुख न देने की प्रार्थना है, परंतु उसका विशेषण दिया है विरही प्राण हरण, अतः यहाँ अनुवाद आयुक्त दोष है। अनुवाद में तृतीय चरण नहीं होना चाहिए। जो विरहियों के प्राणों को हरण करता है उसे कोई विरही अपनी प्राण रक्षा की इच्छा कैसे मांग सकती है। लग्नम इति। जो तलवार राग से युक्त होकर शत्रुओं के गले लगी थी और अन्य लोगों ने जिसे मातंगों के भी ऊपर गिरते देखा है, उसमें सत्य होकर यह राजा मेरी कुछ परवाह नहीं करता, तुम्हें मालूम रहे उसे मुझे वृत्तियों के अधीन कर रखा है। मानो लक्ष्मी की आज्ञा से यह संदेश सुनाने के लिए इस राजा की कृति लक्ष्मी के पिता समुद्र के पास पहुंची है। तात्पर्य किसी वीर राजा की कृति समुद्र पर्यंत पहुंची है। उस पर कभी उत्प्रेक्षा करते हैं कि राजा तलवार पर आसक्त होकर उसी का हो रहा है, अतः लक्ष्मी को सपत्नी द्रोह उत्पन्न हुआ है और उसने इसकी कृति को अपने पिता के पास उक्त शिकायत करने भेजा है, जिसमें तलवार की बुराई राजा की लापरवाही और अपनी दुर्दशा का हाल है। अत्र इति। यहाँ विदितम ते अस्तु। इतने तक वाक्य पूरा हो चुका था, उसे तेन इत्यादि में फिर उठाया है, अतः निर्मुक्त पुनरुक्तत्व अथवा समाप्त पुनरातत्व दोष है। अथ इति। अब रस के दोषों का परिणमन करते हैं। रसस्योक्ति ही स्वशब्देन स्थायी संचारिणोरपि परिपंथी रसा अंगस्य विभावादेह परिग्रह आक्षेप कल्पितः कृच्छादनुभाव विभाववयोः अकांडे प्रक्षण छेदौ तथा दीप्तिः पुनः पुनः अंगिनो अनुसंधानम् मन अंगस्य चकृतनम् अति विस्तृत रंगस्य प्रकृतिनाम विपर्ययः अर्थानौचित्य मन्यश्च दोषारसगतामताः रसस्य स
शब्दो रस शब्द श्रृंगार दिशब्दश्च क्रमेण तथा तामुदीक्ष्य कुरकुंडली लाक्षी रसोन कोप्यम जायत चंद्रमंडल मालुक्यम श्रृंगारे मग्नमनंतरम स्थायी भावस्य स्वशब्द वाच्यत्वं यथा अजायत रतीयस्तस्यास्त्वयि लोचन गोचरे व्यभिचारिणः स्वशब्द चायत्वं यथा जाता लाजवंती लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुंबने अत्र प्रथमे पादे आसीन् मुकुले साक्षी सा इति लजाया अनुभाव मुखेन कथने युक्तः पाठ मानं मा कुरु तवांगिहि ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम् अत्र यौवनास्थैर्य निवेदनम् श्रृंगार रसस्य परिपन्थिनः शांत रसस्यांगः शांतस्यैव च विभावैति श्रृंगारे तत्परिग्रहो न युक्तः धवलयति शिशिरयो रोचिषि भुवनतलम् लोकलो लोचनानंदे इस्यतिक्ष क्षिप्त कटाक्षाः स्मेर मुखे सा निरीक्षतां तन्वी अत्र रसस्यो दीपनम् आलंब विभाव अनुभाव पर्यय साइनौ स्थिति विति कल्पनः कष्ट कल्पना परिहरति रति मुति मतिं लुनीते स्खल लर्तीतरं परिवर्तते चभुयः इतिवत भीषमादशास्यं देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कुर्मः अत्र रतिपरिहारादिनां करुणादावपि संभावात् कामिनीरूपो विभावः कृच्छादाक्षेप्यः अकाण्डे प्रथमनं यथा वेणिसंहारे द्वितीये अङ्के प्रवर्तमानः अनेकवीरसंरक्षे काले दुर्योधनस्य भानुमत्या सह श्रृङ्गारप्रथनं छेदो यथा विरचरिते राघवर भागयोरधारारू अधिरूढे यिन्व संरम्भे कंकणं मोचनाय गच्छम् इति राघवस्य इति पुनः पुनर्दृप्य तथा कुमारसंभवे रतिविलापे अंगिनो अनुसंधानं यथा रत्नावल्यां चतुर्थे अंके बाभ्रम् अगमने सागरिकाय विस्मृतः अनंगस्य कृतनं यथा कर्पूरमञ्जर्यां राजनायिकयोः स्वयं कृतं वसन्तस्य वर्णनम् आदृष्ट्य बन्दीवर्णितस्य प्रशनम् अङ्गस्य अतिविस्तृतिर्यथा किराते सुराङ्गनाम् अभिलाषादिः प्रकृत्यो दिव्या आदिव्या दिव्या दिव्या श्रेति तेषां धीरोतादिताः तेषाम् अप्योदात मध्यमत्वं तेषु चयोः यथाभूतस्तस्याः यथा वर्णने प्रकृतविपर्ययोः दोषः यथा धीरोदातस्य रामस्य धीरोदातक्षवच्छद्मन बालीवधः यथा वा कुमारसंभवे उत्तमदेवतोः पार्वती परमेश्वरोः संभोगशृङ्गारवर्णनम् इदं पित्रोः संभोगवर्णनम् इत्यवाच्यनम् अनुचितम् इत्याहु अन्यदनौषितं देशकालादिनामन्यथा यद्ववर्णनं तथा सति हि काव्यस्ता सत्यप्रतिभासेन विनयानु उन्मुखीश काराशंभवं इभ्यः पृथग् अलंकारदोषाणां नैव संभवः इभ्यः उदित्यभ्यो तथा हि उपमाया सादृशायां संभवयोर उपमानस्य जाति प्रमाण गतन्युनत्वा धिकत्योर अर्थांतरशे उत्प्रेक्षितार्थ समर्थने नान उचितार्थत्वं कर्मेण यथा ग्रंथनामी काव्यशनि शशिनं वित्ततार्थं रश्मिं प्रज्वलं जलाधारा वन्नि पतन्तिरसरास्तव चंडाल इव राजासौ संग्रामे अधिका साहस कर्पूरखंड इव राजति चंद्रबिम्बः हरवनीलकंठोऽयं विराजति शिखावलः स्तनावद्रेश्यमानौ ते दीवाकरार्चक्ति
तो गुहाशु लीनम दिवावित्तम इवांधकारम क्षुद्रेयपि नूनम शरणं प्रपन्ने ममत्वं मुञ्चैह शिरसामतीव एवमादिशुत्प्रेक्षात् अर्थस्यासंभूतस्वैव प्रकृतिभानं स्वरूपं इत्यमनुचितमेव तत्समर्थनं यमकस्य पादत्रयगतस्य प्रयुक्तत्वं दोषः यथा सहस अभिजनैः स्निग्धैः सहसा कुञ्जमन्दिरम् उदिते रजनीनाथे सहसा याति सुन्दरी उत्प्रेक्षायाम् यथा शब्दस्यो उत्प्रेक्षद्यो कत्वे वाचकत्वम् यथा ईशमूर्तो यथा धर्मः क्षित्तिपो रक्षति क्षितिम् एवमनुप्राप्ते वितिर्विरुधस्य प्रतिकूलवर्णनम् यथा वट्ठै उलट्ठैत्यादौ उपमायाम् च साधारणधर्मस्याधिकशून्ययो अधिकपदत्वं च क्रमेणद उदाहरणं नानस्ज्योतिषा भाति शुभुर्भूतिषितद्युतिः विद्युतेव शरन्मेधो नीलवारिखण्डध्रिकः अत्र भगवतो नीलकण्ठत्वस्य प्रतिपादनाञ्चं चतुर्थपादुवधिकः कमलालिङ्गितस्तराहारहारे मुरं दिशन् विद्वतिभूषितो नीलज्जिम्मुतम् इव राजते अत्रापमानस्य शबलाकत्वं वाच्यत्वम् अस्याम एवोपमानोपमेवो अलिङ्गवचनलिङ्गवचनभेदस्य कालपुरुषः विद्यादिभेदो भेदस्य च भग्नप्रकरत्वम् क्रमेण उदाहरणं सुधेव विमलचन्द्रः ज्योत्सना इव सीताकृतिः काप्यभिख्याः तयोरासीद व्रजतो शुद्धवेशयोः हेमणि निर्मुक्तयोगे चित्राचन्द्रमसोरिव अत्र तथाभूतचित्राः चन्द्रमसो शोभानखल्ववासितः अपि न सर्वदा अपि भवति हि लतेव राजसे तन्वी अत्र लता राजते त्वं तु राजसे चीरं चिवतु ते सुन्मार्कण्डे मुनिर्यथा अत्र मार्कण्डेय मुनिर्यत्तेव न खल्वेद तस्य जीवत्वे इत्यनेन विज्ञेयम् इह तु यत्र लिङ्गवचनं भेदेऽपि न साधारणधर्मस्याअन्यथा भावस्तत्र न दोषः क्रमेण उदाहरणं मुखं चन्द्रैवावति इवाभाति तद्वेषो सदृशो अन्याभिः स्त्रिभिः मधुरतावृतः दधति स्म परां शोभां तदीया बिभ्रमा इव पूर्वोदाहरणेषु उपमानोपमेयो अरश्कस्यैव साधारणधर्मेणन्यैव सीधेः प्रकरान्त अर्थस्य स्फुटो निर्वाह एवमनुप्राप्ते वैफल्यस्यापुष्टार्थत्वं यथा अनु अनडूरणन् मणिमेखलमरिपिरलसिन्यानमञ्जुरमञ्जिरं परिसरमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते एवं समासोक्तौ साधारणविशेषणं वशात्परार्थस्य प्रतीतावपि पुनस्तस्य शब्देनोपादानस्यात् प्रस्तुतम् प्रश्यसायामव्यञ्जनैव प्रस्तुतार्थवद्गतेः शब्देन तद्विधानस्य च पुनरुक्तत्वम् क्रमेण उदाहरणम् अनुरागवन्तामपि लोचनयोरदर्धतम् वपुः सुखम् मतापकरणम् निरकाशयद्रम् विमपेतवसुम् विशदालयाद परधिकणिकाम् अत्रापरदिग्ध्यत् तेव तावतैव तस्या गणिकात्वं प्रतीयते आहुतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान् पुरो वार्यते मध्ये वाधुरी वा वसंस्त्रीणा मरणिधिते मरीणा मधुरं खाद्यत्यो अपि न कम्पते प्रचलितुं मध्ये अपि तेजस्विनां धिक्कसामान्यं चेतसं प्रभूमिवानाम मित्रष्टं अन्तरं च अत्राचेतसः प्रभोर अभिधानम् उचितम् एवमनुप्राप्तिः प्रसिद्धम् अभावस्य ख्याति विरुद्धत्वं यथा चक्राधिष्ठाताम् चक्रिगोत्रम् गोत्रादि
दुक्षितं वृषं वृषभक् केतुश्च प्रायक्षत्रस्य भूभुजः उक्तदोषाणां च केचिद्दोषतम् क्वचित् गुणत्वम् इत्याह वक्तरी क्रोधसंयुक्ते तथा वाच्ये समुद्भूते रौद्रादौ तु रसेयन्त्यम् दुःख्रस्वत्वम् गुणः भवेत् येषुः चास्वादस्वरूपेण विशेषात्मा मुख्यम् गुणम् प्रकर्षणो उपकार इत्वादगुणः इति व्यपदेशो भाक्तः क्रमेण यथा तद्दिच्छेदकृशस्य कण्ठमुठितप्राणस्य मे निर्दयम् कुरः पञ्चक्षरः स्वरैरति अतिशय अभिनन्दमनुः निर्भरम् सम्भोर्भूतकृपा विधेयमनसः प्रोद्धामनेन प्राज्ज्वालज्यालगालितः पुनरवास्ताम् समस्ताम् आत्मनाम् अत्र शृङ्गारे कुपितो वक्त्राः मूर्धव्याधूयमानध्वम् मरधुनीलोकलोकलाजुः ओद्भुताम्भक्षोदम्भ आत्प्रशम्भनीभम् चित्रनक्षत्रलक्षणम् ऊर्ध्वन्यस्त्रादिदण्डभ्रमेरभ्रमर सोऽद्यन्तभ्रस्वत् प्रवेगः भ्रान्तब्रह्माण्डखण्डप्रवीरतु शिवम् सम्भवम् ताण्डवम् कः अत्रोद्दाह ताण्डवम् वाच्यम् इमे पद्मे मम रौद्रादिरसे तु तद्वितत्यापेक्षयापि दुःस्रत्वम् मन्यतम् गुणः यथा उत्कृत्यो कृत्रिम् इत्यादि अत्र विभत्सो रसः सुरता अम्ब गोष्ठयादावस्वलिलत्वम् तथा पुनर इति गुणः एव यथा करिहस्तेन संबाधेः प्रविश्यान्तविरोडे उत्सर्पद्धजः पुंसः साधनात् विराजते अत्र हि सुरताष्टभोष्टगोष्ट्याम् द्वयर्थैः पदैः पिशूनयश्चैय रहस्यवस्तु इति कामशास्त्रे स्थितिः आदिशब्दा क्षमकथाप्रभृतिषु बोध्यव्यम् हिन्दी रसस्य इति किसी रस का उसके वाचक पद से अर्थात सामान्यवाचक रस शब्द से या विशेषवाचक श्रृंगार आदि शब्द से कथन करना एवं स्थायी भाव और संचारी भावों का उनके वाचक पदों से अभिधान करना विरोधी रस के अंगभूत विभाव अनुभाव आदियों का वर्णन करना विभाव और अनुभाव का कठिनता से आक्षेप हो सकना रस का स्थान में विस्तार या विच्छेद करना बार बार उसे दीप्त करना प्रधान को भुला देना जो अंग नहीं है उसका वर्णन करना अंगभूत रस की अति विस्तृत करना प्रकृतियों का विपर्यास करना अर्थ अथवा अन्य किसी के अनौचित्य का भंग करना ये सब रस के दोष कहते हैं। रसस्य इति रस का सशब्द रस शब्द है और सामान्य और श्रृंगार आदि शब्द भी है। तम इति इस पद्य में पूर्वार्ध में सामान्यवाचक रस शब्द से रस का कथन किया है और उत्तरार्ध में विशेषवाचक श्रृंगार शब्द से उसका कथन किया है। अतः स्वशब्द वाच्यत्व नामक रस दोष है। स्थायी भाव के स्वशब्द वाच्यत्व का उदाहरण देते हैं अजाय इति यहाँ रति शब्द से स्थायी भाव का कथन है। जात इति यहाँ लज्जा रूप संचारी भाव का स्वशब्द वाच्यत्व है। यहाँ प्रथम चरण में मुकुलिताक्षी पढ़कर अनुभाव के द्वारा लज्जा का वर्णन करना उचित है। मानम इति यवन की अस्थिरता का कथन श्रृंगार रस के विरोधी शांत रस का अंग है। उसी का यह उद्दीपन विभाव है अतः श्रृंगार रस में उनका कथन उचित नहीं। अनुभाव के कष्ट में आक्षिप्त होने का उदाहरण अधवल इति लोक के लोचनों में आनंदित करने वाला चंद्रमा अब जब अपने किरणों से भूमंडल को धवल कर रहा है उस समय कुछ कटाक्ष विक्षेप करती हुई स्मित मुखी उस सुंदरी को देखो। अत्र इति यहाँ श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव चंद्रमा और आलंबन विभाव नायिका अनुभाव पर्यवसायी है अर्थात अनुभाव की कठिनता से कल्पना कराते हैं। अनुभावं पर्यवसायतः परकरणाद्यनुसंधानान्तरं विलंबेन बोधयत इत्यनुमान पर्यवसायिनौ। उक्त पद्य में चंद्रमा उद्दीपन विभाव है और नायिका आलंबन विभाव परंतु
नायक के रति कार्य का सूचक कोई पद नहीं है, इसका आक्षेप कठिनता से करना पड़ता है। नायिका के कटाक्ष विक्षेप और स्मित यद्यपि रति का कार्य है, किंतु नायक का स्पष्ट वर्णन न होने के कारण यह नायिका के यह कहना कठिन है कि वे रति के कार्य है या स्वाभाविक विलास मात्र उक्ता वक्ता या नायक दोष है या कोई तटस्थ, यह भी पता नहीं चलता। यदि नायक है तो निरीक्षताम किस से कहा गया है, अतः वक्ता कोई और है तो जिससे कह रहा है वह नायक ही है, और या कोई रास्ते चलता है। इसकी बात को सुनकर उसके हृदय में रति का संचार हुआ भी या नहीं इत्यादि जटिलता के कारण यह अनुभवों की कल्पना कष्ट से होती है। विभाव की कष्ट कल्पना का उदाहरण परिहरति अत्र इति, किसी वस्तु की रति का परिहरति, मति का भ्रंश, देह का डगमगाना, करवटे बदलना आदि दशा जो इस पद्य में कही है वह करुण रस में भी हो सकती है। यतः श्रृंगार और करुण के इस साधारण अनुभवों को वर्णन रमणीय भी कामिनी का विरहणी समझना कठिन है। अकरांडे प्रश्नम इति आकांड में रस का विस्तार जैसे वेण संहार में दूसरे अंक में जब अनेक कौरव वीरों का नाश हो रहा था तब उस समय दुर्योधन का भानुमती के साथ श्रृंगार कथा का विस्तार किया है। छेद इति आस्थान में विच्छेद करते समय जैसे महावीर चरित्र में जब राम और परशुराम दोनों का जोश पूरे वेग से उमड़ रहा था उसी समय रामचंद्र के मुख से यह कहलाना कि परशुराम की कंकड़ खुलवाने जाता है इत्यादि यहाँ सारंभ का विच्छिन्न कर दिया है, अचानक विच्छिन्न कर दिया है। वस्तुतः महावीर चरित्र में श्री रामचरित्र ने उक्त वाक्य नहीं कहा है, किंतु कंचुकी ने आकर राजा जनक से यह कहा कि देव्यः कंकणमोचनाय मीलिताः राजन्वरः स्पृश्यताम्। बार बार दीप्तिक जैसे कुमार संभव में रति विलास में अंगी का अनुसंधान, जैसे रत्नावली नाटिका में बाभ्रव्य का सागरिका को भूल जाना, अनंग का कृतन जैसे कर्पूर मंजरी में राजा और नायिका ने अपने किए वसंत वर्णन का अनादर करके बंदी के वर्णन की प्रशंसा की है। अप्रधान का विस्तार जैसे किरात के आठवें सर्ग में अप्सराओं का विलास, प्रकृतियां तीन प्रकार की होती है दिव्य आदिव्य और दिव्यादिव्य, इनके धीरोदात आदि भेद भी पहले कहे हैं, उनमें भी उत्तमत्व मध्यमत्व और अधमत्व होता है। इनमें जो जैसी प्रकृति है उसके स्वरूप का अनुरूप वर्णन न होने में प्रकृति विपर्य दोष होता है। जैसे धीरोदात नायक श्री रामचंद्र जी का धीरोदात की भांति कपट से भी वाली का वध करना, अथवा कुमार संभव में उत्तम देवता श्री पार्वती और महादेव का संभोग श्रृंगार वर्णन किया करना, इसके विषय में प्राचीन आचार्य कहते हैं कि माता पिता के संभोग वर्णन के समान यह वर्णन अत्यंत अनुचित है। अन्यद इति इसके अतिरिक्त देश काल आदि के विरुद्ध वर्णन को भी अनुचित के अंतर्गत जानना, क्योंकि उससे दिव्य का असत्यता प्रतीत होने के कारण राजकुमार आदि विनय पुरुषों का चित्त उधर आकृत नहीं हो सकता। एभ्य इति इन दोषों से पृथक अलंकार दोष नहीं हो सकते, इन दोषों के अंतर्गत ही होते हैं। उपायमात इति यहाँ उपमा का असादृश्य अर्थात साधारण धर्म की अप्रसिद्धि और यथासंभव अर्थात उपमान की अप्रसिद्धि हो, अथवा उपमान में या जाति स्मरण की न्यूनता का अधिकता विद्यमान हो, वहाँ यह अर्थांतर न्यास अलंकार में यदि उत्प्रेक्षित अर्थों का समर्थन किया हो तो वहाँ भी अनुचितार्थत्व दोष जानना। क्रम से उदाहरण ग्रंथानाम इति काव्य और चंद्रमा का सादृश्य प्रसिद्ध न होने के कारण यह अनुचितार्थत्व दोष है। प्रज्वलम इति यहाँ अनुपमान भूत जलती हुई जल की धाराएं अप्रसिद्ध है। चंडाल इति यहाँ उपमान में जातिगत न्यूनता है। कर्पूर इति यहाँ उपमान प्रमाण से शून्य है। हरवद इति यहाँ उपमान में जाति कृत अधिक है। तिर्यग योनि का उपमान महेश्वर को बनाने के लिए अनुचितार्थत्व दोष में दोष है। स्तनाव इति यहाँ उपमान में प्रमाण के अधिक है। दिवाकरण इति जो हिमालय दिन में मानो सूर्य से डरकर अपनी गुफाओं में छिप जाते हुए अंधकार की रक्षा करता है, वो बड़े बड़े लोग अपने शरणागत क्षुद्र पुरुष पर भी अत्यंत ममता दिखाते हैं। एवमा सिद्धिश्व इति उत्प्रेक्षिति पदार्थ असत्य रूप से प्रतीत हुआ करता है। यतः प्रकृत पद में अंधकार का भय उत्प्रेक्ष होने के कारण उसका समर्थन करने के लिए उत्तरार्ध की अनुचित समर्थन सत्य पदार्थ कर पर किया क्रूर क्रिया किया जाता है, किंतु यहाँ असत्य पदार्थ का समर्थन किया है। यमकस्य इति यमक यदि तीन चरणों में चौथा चरण में न हो तो वहाँ अप्रयुक्त दोष जानना, जैसे सह इति उत्प्रेक्षायाम इति उत्प्रेक्षा में यदि यथा शब्द का प्रयोग हो तो अववाचकत्व दोष होता है, जैसे एस इति एवम इति। इसी प्रकार अनुप्रास के विरुद्धत्व अर्थात विरोध दोष के रोष के अनुगुण वर्णों की रचना को प्रतिकूल वर्णत्व के अंतर्गत समझना चाहिए, जैसे ओवट्ठा इत्यादि में श्रृंगार रस के विरोधी वीर रस के अनुराग कठोर वर्णों की रचना। उपाय अंच इति उदाहरण उपमा के साधारण धर्म में अधिक होने पर अधिक पदत्व और न्यून होने पर न्यून पदत्व दोष होना है। क्रम से उदाहरण देते हैं। नयन इति भस्म में सुख भस्म से शुक्ल शंकर भगवान तृतीय नेत्र की ज्योति से ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे छोटे से नीले बादल के टुकड़े की युक्त बिजली से अलंकृत शरद ऋतु का काला बादल। यहाँ चतुर्थ वर्ण अधिक है क्योंकि उपमेय में नीलकंठ का कथन नहीं है। विभूति के श्वेत शंकर शरद ऋतु के श्वेत बादल के समान हुए और तृतीय नेत्र बिजली के समान। अब रहा नीलवारिद खंड, उसके लिए उपमेय के कुछ नहीं। यदि शंकर के नीले कंठ का उल्लेख कर दे तो सादृश्य ठीक हो जाए। यहाँ धिक में कुत्व चिंतनीय है किन प्रत्यय में कुत्व दधृक में ही होते हैं। धृष धातु से घृत और धृ धातु से धृत रूप बन सकता है। न्यूनत्व का उदाहरण कमल इति लक्ष्मी के अलंकित और मुक्ताहार में विभूषण भगवान विष्णु विद्युत से युक्त नील मेघ के सदृश दिखते हैं। यहाँ उपमान मेघ के मिस बालक का और कहनी चाहिए क्योंकि उसके बिना मुक्ताहार का कोई उपमान नहीं होता। अतएव यहाँ न्यून पदत्व के अंतर्गत यह अलंकार दोष है। अस्वयं इति एवं यदि उपमा के यदि उपमा में उपमान का उपमेय के लिंगों में या वचनों में भेद हो अथवा वर्तमान आदि काल में यद प्रथम मध्यम आदि पुरुषों में किम वा विद्यादिक अर्थों में भेद हो तो भग्न प्रक्रमता दोष जानना है। क्रम से उदाहरण सुध इति यहाँ स्त्रीलिंग सुधा का उपमेय पुलिंग है, अतः उपमानोपमेय जानना लिंग भेद होने से प्रमग्नकत्व दोष है। ज्योत्सना इति यहाँ उपमान बहुवचन और उपमेय एक वचन है। काल भेद का उदाहरण काप इति वशिष्ठ मुनि ने आश्रम को जाते हुए सुभाषित सुलक्षण सुदक्षिणा और दिलीप की सुभाषित ऋतु के कुहरे में निर्मुक्त चित्रा और चंद्रमा के समान अनिर्वचनीय था। भूतकाल का संबंध उपमान के साथ नहीं हो सकता। चित्रा और चंद्रमा की शोभा आज भी वैसी होती है। यहाँ काल भेद है। लतेत इति यहाँ मध्यम पुरुष का संबंध उपमान भूत लता के साथ नहीं हो सकता। चिरम इति यहाँ चिरंजीव होने का आशीर्वाद मार्कंडेय मुनि ने अकिंचित कर और असंबद्ध है। वे तो चिरंजीवी है ही, उन्हें इस आशीर्वाद से क्या। यहाँ विधि भेद है। यह तू उपमा में यहाँ लिंग भेद और वचन भेद होने पर भी साधारण धर्म में अन्यथात्व न हो अर्थात सुखम इति वह एक रूप में उपमान और उपमेय के साथ संबंध कर सके वहाँ यह दोष माना जाता है। जैसे सुखम इति यहाँ भान साधारण धर्म है, उसकी वाचक अभाति क्रिया है, इसका संबंध उपमेय और उपमान चंद्रमा दोनों एक समान का रूप हो जाता है। किंतु सुधेव विमल चंद्र यहाँ विमलत्व साधारण धर्म है, यहाँ वाचक विमल पुलिंग है, अतः उसका संबंध उपमेय के साथ हो सकता है उपमान के साथ नहीं, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है, इसके लिए विमला होना चाहिए। वचन भेद में दोषाभाव का उदाहरण तद्वेष इति यहाँ यदि भ्री धातु से कत प्रत्यय माने तो भ्रित एक वचन हो सकता है और यदि क्विप प्रत्यय माने तो बहुवचन में हो सकता है। एवं दध्यते को यदि दध धारणे को रूप माने तो एक वचन में, यदि दुदाए का रूप माने तो यदि यही बहुवचन हो सकता है। यतः यहाँ विशेष रूप से उपमेय में एक वचनांत होने पर उपमान भेद विभ्रम के बहुवचनांत होने पर भी एक दोष कोई दोष नहीं होता है। पूर्व इति सुदेव से लेकर चिरम जीवतु तक के पूर्व उदाहरणों में साधारण धर्म का अन्वय उपमान और उपमेय में से ही किया गया है। ये कहीं साथ होता है, दोनों के साथ नहीं। अतः वहाँ प्रकारांत का अनिर्वाह स्फुट होने से भग्न प्रकरम दोष है एवं इति। इसी प्रकार अनुप्रास में वैफल्य होने से अपूर्वार्थत्व दोष होता है। जैसे अनग्रु इस पद्य में कोई रस नहीं होता, अनुप्रास मात्र है, अतः रस पोषक न होने पर वे विफल है एवं इति। उसी प्रकार समासोक्ति में साधारण विशेषणों के बल से व्यंजमान्य अर्थ का यदि वाचक शब्दों से कथन करें अथवा अप्रसुक्त प्रशंसा में व्यंजना से जो प्रस्तुत अर्थ प्रतीत होता हो उसको वाचक शब्दों से अभिधान करें तो पुनरुक्त दोष जानना। क्रम से उदाहरण अनुराग इति, यहाँ अपराधिक अपरदिक इतने से ही समासोक्ति के बल से पश्चिम दिशा का वैश्यत्व प्रतीत होता है। फिर इसके लिए गड़िया शब्द का प्रयोग करने से पुनरुक्ति दोष होता है। आहुतेश्व इति, अज्ञानी प्रभु के समान सामान्य अर्थात जाति को धिक्कार है, जो विशेष गुणों का विचार न करके भले बुरे को सब ध्यान बारह पसेरी की लोकोक्ति को चरितार्थ करता है। देखो यदि विहंगमों को बुलाया जाए तो सामान्य के बल से मच्छर भी बीच में आ सकेगा, क्योंकि विहंगमत्व जाति तो उसमें भी है। और भी आकाशचारी और पंखधारी हैं, इसके सिवा और भी किसी गुण की तो अपेक्षा इसको है नहीं। जिसका फल हुआ होता है कि कोकिल चातक हंस मयूर बाज और सीकरों के बीच में मच्छर मिश्रिया भी खम ठोक कर आ खड़े होते हैं, एवं तृणमणि भी मणियों के बीच में इसके मणित्व जाति कारण गिना जाता है। और जब तेजस्वी की गणना होती है तो तारे चंद्रमा और सूर्य आदि के बीच नाम लिखाने के खद्योत भी नहीं डरता, क्योंकि तेजस्वी जाति तो उसमें भी है, उसकी दुम में भी जरा सा तेज चाहे अंधेरे में ही सही चमकता तो है। यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रस्तुत अप्रस्तुत सामान्य के यह मनोहर वर्णन में प्रस्तुत किसी अविवेकी प्रभु का पता व्यंजना वृत्ति देती है। फिर इसके लिए तसम प्रभुम या का अभिधान अनुचित है एवं इति। इसी प्रकार अनुप्रास के चक्कर में यदि आकार यदि सुप्रसिद्ध अर्थात पदार्थ का वर्णन किया हो तो ख्याति विरुद्धत्व दोष जानना। जैसे चक्र इति, यहाँ अनुप्रास के आधार पर ही चक्री में चक्रितत्व और गोत्राभित से ऊंचा गोत्र दिलवाया है। पुराणादिकों में कहीं इन वस्तुओं के दोनों में से उक्त देवताओं की प्रसिद्धि नहीं है। उक्त दोषाणाम इति, पूर्वोक्त दोष कहीं दोषत्व नहीं पैदा करते और कहीं तो गुण हो जाए तो जाते हैं। अब उन्हीं स्थलों का निर्देश करते हैं। वक्तर इति, वक्ता यदि क्रोध से भरा हो या अर्थ जिसका वर्णन समुद्भूत हो अथवा रौद्र बीर विभत्स आदि रस हो तो दूसरत्व गुण हो जाता है। ये सूच इति, गुण मुख्य गुण रस के ही स्वरूप विशेष होते हैं और यहाँ रस आत्म रूप है। अतः यद्यपि शब्द मात्र में रहने वाले दुह स्रवत्व को मुख्य रीति से गुण नहीं कर सकते, तथापि आस्वाद अर्थात रस के स्वरूप विशेषात्मक जो मुख्य गुण उनके किए हुए रस प्रकर्ष के उपकारी होने से अर्थात उस रस प्रकर्ष के अनुकूल होने से दोषत्वादिक में गौण रीति के गुण शब्द का प्रयोग जानना। गुणकृत प्रकर्ष दोष उपकारित्व रूप उपचार से यहाँ लक्षणा होती है। तद्विक्ष इति, मैं उसके वियोग में कृश हूँ, मेरे प्राण गले तक आ पहुँचे हैं, फिर भी यह क्रूर काम बड़ी निर्दयता से अत्यंत तीखे बाणों के द्वारा मेरे हृदय को बेध रहा है। दुखी प्राणियों पर दया करने वाले भगवान शंकर के नेत्र भी प्रचंड ज्वालाओं से यह दुष्ट ईश्वर करे फिर से बिल्कुल भस्म हो जाए। अत्र इति, यहाँ यद्यपि विप्रलम्ब श्रृंगार कोमल रस है तथापि वक्ता काम के ऊपर कुपित हो गया है, अतः उत्तरार्ध का श्रुति कटुत्व यहाँ गुण है। संभूतवाच्य समुद्भूतवाच्य में श्रुत कटुत्व का उदाहरण मूर्ध इति सिर पर घूमती हुई और शब्द करती हुई गंगा की चंचल तरंग मालाओं से चारों ओर छिटके हुए जल कणों के बहाने लाखों मानो तारे आकाश की ओर से जिसमें फेंके हुए जा रहे हैं और ऊपर उठाए हुए पैर के घूमने से उत्पन्न महावेगवान वायु के चक्कर से पड़कर ब्रह्मांड जिसमें घूमने लगा है वह शंकर का तारा तांडव नृत्य तुम्हें मंगलदायक हो, यहाँ उद्ध तांडव वाच्य है। अतः दुश्रधत्व गुण है, दोष नहीं। रौद्राधिक दीप्त रसों से दुश्रत्व इन दोनों के अधिक गुण होता है, जैसे पूर्वोक्त उत्कृत इत्यादि पद्य में इसमें विभत्स रस है। सूरत इति जहाँ काम गोष्ठी में वहाँ अनुशीलत्व गुण होता है, जैसे करिहर्ष इति संवाद अर्थात दुष्प्रवेश सेना को पहले हाथियों ने अपनी सूंड में बिलोड़ित किया, फिर उससे घुमाता हुआ पुरुष का ध्वज साधन के भीतर सुशोभित किया। दूसरे पक्ष में तर्जन्यम नामिक आयुक्त मध्यमा पृष्ठतो यति करिहस्त इति प्रोक्तः काम शास्त्र विशारदयि संवाद योनि ध्वज पुनरक्त का नियम साधन स्त्री व्यंजन अत्र हिति सुरतारंभ गोष्ठी में द्वयर्थक पदों से गुप्त वस्तुओं को प्रकाशित करना यह काम शास्त्र का नियम है। आदि शब्द से शांत आदि का कथाओं का ग्रहण है, जैसे रंभाशुक संवाद में सुखदेव की अनेक उक्तियां हैं। संस्कृत स्यातामदोसौ श्लेषादौ निहतार्थ प्रयुक्तते पर्वत भेदी पवित्रम जेत्रम नरकस्य बहुमतंगनम हरिमीव 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 सुरशारिदंभः पत्तनमत्तम अत्रेन्द्र पक्षे पवित्र शब्दो निहतार्थः निह सिंह पक्षे मतंग शब्दो मातंग अर्थे प्रयुक्ततः गूढः स्याद् प्रतित्वं ज्ञत्वं चेदवक्तव्यावच्ययुः यथा त्वाम मनन्ति प्रकृतिं पुरुषार्थ प्रवर्तिं तद्दृशीनिम उदासीनम त्वामेव पुरुषं विदुः स्वयं वापि परामर्शे अप्रतीतत्वं गुण इत्यनु सज्यते यथा युक्तः कलाभिस्तमसामं बिवृद्ध्यै क्षीणाश्चताभिः छत्तये एषाम शुद्धं निरालंब पदावलंबं तमात्मचंद्रं परिशीलयामि कथितं च पदं पुनः विहितस्यानुवाद्यत्वे विषादे विस्मये क्रुधि दैन्येथ लटानुप्रासे अनुकम्पायां प्रसादने अर्थान्तर संक्रमितवाच्ये हर्षये अवधारणे गणयित्येव यथा उदेत्ति सविता ताम्रः इत्यादि अत्र विहिता अनुवादः हन्त हन्त गतः कान्तो वसन्ते सखी नागन्तः अत्र विषादः चित्रम चित्रमा अनाकाशे कथम सुमुखी चंद्रमा अत्र विस्मयः सुनयने नयने निधेहि इति यत्र लटानुप्रासः नयने तस्यैव नयने च इत्यादयो अर्थान्तर संक्रमितवाच्यो ध्वनिः एवमन्यत्र संदिग्धत्वं तथा व्याजस्तुति पर्यवसायी चेत गुणी गुण इत्येव यथा पृथुकार्तस्व पात्रं भूषित निशेष परिजनं देव बिलसत् करेणु गहनं संप्रति समवाययो श्रदनं वैयाकरण मुख्येतु प्रतिपादये यथ वक्तरी कष्टत्वं धूसवत्वं वाय गुण इत्येव यथा दिधि वेदे शततं कश्चिद् गुणावृधयोरभाजनं किप प्रत्ययन अनिभः क्वश्चिद्यत्र सन्निहिते नयते अत्रार्थः कष्टः वैयाकरणश्च वक्ता एवमस्य प्रतिपाद्यत्वे अपि अत्रास्मार्षु उपधायाः त्वामहं न कदाचनम् अत्र दुःश्रवत्वं वैयाकरणो वाच्यः एवमस्य वक्तृत्वे अपि ग्रामत्वं अमोक्तिषु गुणः इत्येव यथा मम एषो सह हर बिम्बोदीशः हे अङ्गविणापिणो व एदे असम्महोषाः पणन्ति यशासु दधूधारहेव इयं विदुषकोक्तिः निर्हेतुता तु ख्याते यथ दोषतां नैव गच्छति यथा सम्प्रतिं सन्ध्या समयश्च क्रद्वन्द्वयानि विघटयति कवीनाम शङ्खे ख्याते गुणः ख्यात विरोधता कविसमयख्यातानि च मालिन्यं व्योम्नि पापे यशसी धवलता वर्ण्यते हास्कृतयो रक्तौ च क्रोधरागो सरिद उदधिगतं पङ्कजेन्दीवरादिः तोया आधारे अखिलेऽपि प्रसरति च मरालादिकः पक्षिसन्धो ज्योत्सनापेया चक्रोरौज्ज्वलः रघर्षमये मानसं यान्ति हंसाः पदाघातदोषं शोकं विकसति वकुलं योषितामाश्यम् अद्यै यो नाम अङ्गेषु हाराः स्फुटति च हृदयं विप्रयोगस्य तापैः मौर्वीरोलवलरोलम्बमाला धनुरथविशिखाः कौंसुमा पुष्केतुः भिन्नं स्यादस्य वारणैर्युवजनहृदयं स्त्रीकटाक्षेण तद्वत अह्यं भोजं निशायां विकसित कुमुदं चन्द्रिका शुक्लपक्षे मेघध्वान्येषु नृत्यं भवति च शिखीनां न प्रशोकफलं स्यात् नरज्या जाती अर्दिर्वसन्ते न च कुसुमफले गन्धारद्रोमाणामित्याद्योने नियमन्यपि समयगतं सत्त्वकवीनाम प्रबन्धे एषामौदाहरणन्याकरेषु स्पष्टानि धनुर्यादिषु शब्देषु शब्दास्तु धनुरादयः आरूढत्वादिबोधाय यथा पुरितेरोदसिध्वानैर्धनुज्यार्स्फला उद्भवे अत्र स्याशब्देनपि गतार्थत्वे धनुः शब्देन जया धनुष्या अतिकरणं बोध्यते आदिशब्दात् भाति कर्णवशंसस्ते अत्र कर्णाधिष्ठितबोधनाय कर्णशब्दः एवं श्रवणकुण्डलशिखरे शेखरः प्रभृतिः एवं निरुपपद्यो मालाशब्दः पुष्पस्त्रम् अजमेवा अभिधत इति स्थितावपि पुष्पमाला विभाति ते अत्र पुष्पशब्दः उत्कृष्टपुष्पबुद्धैः एवं मुक्ताहार इत्यत्र मुक्ताशब्देनान्यरत्नान् मिश्रितत्वं प्रयोक्तव्याः स्थिता अमि धनुर्याजादयः प्रपक्ताव्यस्थिता एव निबद्धव्यान् त्वयिस्थिता जघन्काञ्चीकरणकङ्कणादयः उक्ता वनानन्दे मग्नादेः स्यान्यो उन्पदता गुणः गाढालिङ्गन वामनीकृतकु उच्च प्रोद्भिन्न रोमोद्गम सान्द्रस्नेह रस अतिरेक विगलक्षीम अन्नितांबरा मामानदय मातिमामलितमिति क्षमारोल पिने सुप्ता किं नु किं मनसीने मेलिना बिलिन्ना तु किम् अत्र पिण्डयेति न्यूनं क्वचिन्न दोषो न गुणः न्यूनपदत्वम् इत्येव यथा तिष्ठेत् कोपवादस्मत्प्रभावपिहिता दीर्घन साकुस्सि कुप्यति स्वर्गोऽयो पतिता भवेन्मयि पुनर्भावार्दमख्याः मनः ताम् हन्तुम् विबुधद्विषोऽपि न च मे सक्ताः पुरोवर्तिनी सा च अन्त्यनम् गोचरम् नयनयोरतिथिकोऽयम् विधि अत्र प्रभावपिहितेति भवेद इति चेत्यनन्तरं नैद्यत इति पदानि न्यूनानि येषां पदानां न्यूनतायाम् इष्यत वाक्य व्यङ्ग्यस्य वितर्काख्या व्यभिचारि भावस्योत्कर्षा करणान्न गुणः दीर्घन सित्यादिः वाक्य व्यञ्जनया च प्रतिपत्याः तिष्ठेदित्यादवाक्य प्रतिपतेरबुद्ध्य स्फुटम् एवादभासत इति न दोषः गुणः क्वास्यधिकम् पदम् आचरति दुर्जनो यत्सहसा मनसोऽप्यगोचरानर्थान् तत्र न जाने जाने स्पृशति मनः किं तु नैव निष्ठुरताम् अत्र न जाने इत्यनेन अयोगव्यच्छेदः द्वितीयेन जाने इत्यनेनावमेव जान इत्यान इत्यन्ययोगः व्यवच्छेदाद्दिश्चितिविशेषः समाप्तपुनरातत्वं न दोषो न गुणः क्वचित् यथा अन्यास्ता गुणरत्न इत्यादि अत्र प्रथमार्धेन वाक्यसमाप्तवपि द्वितीयार्धावाक्य पुनरुपातम् एवं विशेषणमात्रस्य पुनरुपादने समाप्त पुनरातत्वं न वाक्यान् अन्तरेस्य इति विज्ञेयं गर्भितत्वं गुणः क्वापि यथा दिङ्गमातङ्गघटा विभक्त चतुरक् घटामही साध्यते सिद्धासापि वदन्तम् एव हि वयम् रोमाञ्चितः पश्यन्त विप्राय प्रतिपाद्यते किम् परम् रामाय तस्मै नमो यस्मात् प्रादुर्भूतका कथाद्भुतमितम् यनैव चास्तम् गतम् अत्र वदन्त एवेत्यादि वाक्यम् वाक्यान्तरप्रवेशात् चमत्कारतिशयम् पुष्णातिः पतत्प्रकर्षता तथा तथेति क्वचित् गुणः यथा चश्चद्भुज इत्यादि अत्र चतुर्थपादे सुकुमारार्थतया शब्दाङ्गम्बरत्यागो गुणः क्वचिद्दुःखौ स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः अनुभावविभावाभ्याम् रचना यत्र नोचिता यत्रानुभावविभावमुखेन प्रतिपादने विशदप्रतीतिर्नास्ति यत्र च विभावानुभावकृतपुरिष्टराहि त्वमेवानुगुणम् तत्र व्यभिचारिणः स्वशब्देनोक्तौ न दोषो यथा औत्सुक्येन कृतत्वरा सह भुवा व्यवर्तमाना हिव्यातैस्तैर्यबन्धुवजनस्य वचनैः निताभिमुख्यम् पुनः दृष्टाग्ने वरमातसाध्वरसरसा गौरी नवे सङ्गमे सरोहत्पुलकाहरेण हसता शिलिष्टा शिवायस्तु वः अत्रौ शुक्यम् त्वरा रूपानुभावमुखेन प्रतिपादनेन झटिति प्रतीतिः त्वराया भस्य भयादिनापि सम्भवात् यो न भानुभावस्य च व्यावर्तनयस्य क्वापि दिनापि सम्भवात् साधयः सहासयस्तु सद्विभावादिः परिपोषस्य प्रकृतरप्रतिकूलप्रायत्वादित्येषाम् स्वशब्द अभिधानमेव ज्ञाप्ययम् सञ्चारत्वेर्विरोधस्य व्यर्थत्वेन वचो गुणः यथा कारकायम् सलक्ष्मणः क्व च कुलम् इत्यादि अत्र प्रशम अङ्गानाम् वितर्कम् मति शङ्काधृतीनाम् अभिलाषाङ्गौ उत्सुक्य स्मृतिदैन्यचिन्ताभिस्तस्कारः पर्यन्ते चिन्ताप्रधानमापश्चकक्षम् आविर्भावयति विरोधिनो अपि अस्मरणे साम्येन वचने अपि वा भवेद्विरोधी नान्यो वन्यम् अङ्गिन्यम् अङ्गत्वम् आप्यतुः क्रमेण यथा अयम् स रसनोत्कर्षी इत्यादि अत्रालम्बम् विच्छेदे रते रसात्मकतया विस्मर्यम् मणानाम् तदङ्गानाम् शोकोद्दीपकतया करुणानुकूलता कारगया
सरागया सुत घन धर्मतो यतक्या कराहति ध्वनि पृथरूप पीछया मुहुर्मुहुर्दर्शन विलहिस्तुष्ठयाम रुषानृपाः प्रियतमेव भोजिरे अत्र संभोग श्रृंगारो वर्णनीयं विरभ्यवहि विचारिणिः क्रोधस्यानुभावः साम्येन विवक्षितः एकं ध्यानमलि निमीलनां मुकुलति प्रायं द्वितीयं पुनः प्रवत्याम वदनाम्बुजस्तन भरे संभोग भावालशम एक अन्यद दुर्विकृष्ट चाप मदन क्रोधान लोद्दीपितं सु संभुर्भिन्न रसम समाधिय समये नेत्रत्रयं पातु वह अत्र शांत श्रृंगार रौद्रश्य शरी पुष्टा भगवद् विषया रतिः यथावा चित्तो हस्तावलग्नः प्रशब्भं महिभितो विहतो अप्याद दान अशुकांत गृह केशेष्वपास्तश्चर निपातितो निक्षितः संभ्रमेण अलिंगनम यो अद्भुत स्त्रिय पुरैत युवतिभिः साश्रु नेत्रोत्पलाभिः कामी वाद्रा परार्धः स दहतु पुरितं सांभौ न शराग्निः अत्र कविगता भवद्विषया रतिः प्रधानं तस्या परिपोषकतया भगवत स्त्री पुरध्वंसं प्रत्योत्साहस्या परिपोष्ठतया रसपदवी ममात्प्राप्तया भावमात्रस्य करुणोऽङ्गं तस्य च कामिवेति साम्यबलादयातः शृङ्गारः एवं च विश्रान्ति धामतया करुणस्य अप्यङ्ग तेवेति द्वयोरपि करुणशृङ्गारभोगः वदुत्पुत्साह परिपुष्ठाद्विषयरति भावस्वाद प्रकर्षकतया योगपद्यसंभवाद अंगत्वेन न विरोधः ननु समूहालम्बनात्मकं पूर्णघनानन्दस्य रूपस्य रसस्य तादृशने तरस्येन कथं विरोधः संभावनीयः एकवाक्ये निवेशप्रादुर्भावयोगपदविरहेण परस्य परोपमर्दकत्वा अनुपतेः नाप्यंग अंगिभावः द्वयोरपि पूर्णतया स्वातन्त्रेण विश्रान्तिः सत्यमुक्तम् अत्त एवात्म प्रधानतरेषु रसेषु स्वातन्त्रविश्रामराहि त्यात्पूर्णरसभावमात्रञ्च विलक्षणयतां सञ्चारिषाम्नः व्यपदेशः प्राप्त्यानाम् अस्म पितामह अनुजक विपण्डित मुख्यश्रीचण्डिदा आसनपादानां तु खण्डरसनाम्ना यदाहु अङ्गं बाध्यो वत संसर्गे यद्वङ्गी स्याद्रशान्तरे नास्वाद्यते समग्र तत्ततः खण्डरसः स्मृतः इति ननु आद्यः कर्णव विभत्सरौद्र वीरभयानकैः इत्ययुक्तन्नयन विरोधिनो वीरशृङ्गारयोः कथमेकत्र कपोले जानक्याः करिकल्लभदन्तद्योतिमुषिः स्मरस्मेरस्फरो अङ्गमरपूलकं वक्त्रकमलम् मुहुपश्यन श्रृणवन रजनीचरशेनाकलकलम् जटायुग्रन्थि दृढयति रघूणां परिभृणः इत्यादौ समावेशः अत्रोच्यते यः खलु रसानां विरोधिताया अविरोधीयाश्च त्रिधा व्यवस्था प्रयोजित आलम्बन् यक्यैव कयोश्चिदाश्रयि यक्येन कयोश्चिन्य परन्तरस्तर्येणुति तत्र वीरशृङ्गारयोर आलम्बनैकन्येव
विरोधः तथा हास्यरौद्रविभत्स हि संभोगस्य विरकरुण रौद्रादि विप्रलम्भस्य आश्रयैकयेन च विरक्त्यानकयोः नैरन्तर्यविभावक्याभ्याम् शान्तशृङ्गारयोः त्रिधाप्यविरोधो विरस्याद्भुतरौद्राभ्याम् शृङ्गारस्याद्भुतेन भयानकस्य विभत्सेनैति तेनात्र विररश्रृङ्गारयोरभिन्ना अवालम्बनत्वात् विरोधः एवं च वीरस्य नायकनिष्ठत्वेन भयानकस्य प्रतिनायकनिष्ठत्वेन निबन्धे भेनाश्रयत्वेन न विरोधः यश्च न गान्धे प्रश्माश्रयस्यापि जिमुत्वाहनस्य मलयवत्यनुरागो दर्शितः तत्र अहोगीतम् अहोवादितत्र इत्यद्भुतस्यान्तरानिवेशनान् नैरन्तर्भावान् शान्तशृङ्गारयोः विरोधः एवमन्यद अपि ज्ञेयम् पाणपाण्डुक्षामम् वदनम् इत्यादौ च पाण्डुकादिनाम अङ्गभावः अरुण विप्रलम्भयति करुणविप्रलम्भेति न विरोधः अनुकारे च सर्वेषाम् दोषाणाम् नैव दीशता सर्वेषाम् दुःसत्त्वप्रभृतिनाम यथा एष दुष्यवचनम् नौम इत्यादि जल्पति कश्चन अत्र दुष्यवचनम् शब्दो प्रयुक्तः अन्यस्याम् अपि दोषाणाम् इत्यौ उचितान्यानाम् मनीषिभिः अदोषताः च गुणा गुणताः गेय च अनुभयात्मताः अनुभयता अदोषगुणता इति साहित्यदर्पणे दोषनिरूपणो नाम सप्तमः परिच्छेदः हिन्दी स्याताम इति शब्दादिकों में निहितार्थत्व और अप्रयुक्तत्व को दोष नहीं माना जाता जैसे पर्वत इति हरि के समान गिरते हुए गंगा जल को नमस्कार करो गंगा जल पर्वत को भेदन के निकलता है पवित्र है नरक को जीतने वाला है बहुत ऋषि मुनियों से समस्त सम्मत है और गंभीर है इंद्र भी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं इन्होंने पर्वतों के पंख काटे हैं ऐसा पुराणों में प्रसिद्ध है पवि से त्र रक्षा करने वाले हैं अथवा वज्र धारण करने वाले हैं नर के बहुमत और गहन दुर्जय है विष्णु पर्वत के उखाड़ने वाले हैं और पवित्र पाप नाशन है नरकासुर को जीतने वाले हैं बहुमत अर्थात बहुपूजित हैं और गहन दुर्गेय हैं समाधिगम्य है एवं सिंह भी पर्वत को अथवा पर्वत सदृश कठोर कुरिकुंभों को भेदन करने वाला है मृगाणाम च मृगेन्द्रो वहम इस गीता वचन में उनके अनुसार भगवान का अंश होने के कारण पवित्र है नरकों का जेता है बहुत से मतंगों का हनन करने वाले हैं इसमें इंद्र के पक्ष में पवित्र शब्द ही निहितार्थ है और सिंह के पक्ष में मातंग शब्द मातंग के लिए अप्रयुक्त है किंतु श्लेष के कारण यहाँ दोष नहीं गंड इति वक्ता का वाच्य यदि दोनों ज्ञाता हो तो अप्रतितत्व गुण होता है जैसे स्वाम इति यद्यपि प्रकृति में पुरुष शब्द सांख्य योग में हरि प्रसिद्ध है तथापि इस संवाद में देवता और भगवान विष्णु ने इन दोनों के अभिज्ञ होने से दोष नहीं है स्वयं इति इस अपने आप जहाँ परामर्श हो वहाँ भी अप्रतितत्व गुण होता है जैसे युक्त इति मैं उस अपूर्व आत्मरूप चंद्रमा का परिशीलन करता हूँ जो कलाओं से युक्त होने पर तो अंधकार को बढ़ाता है और उनमें क्षीण होने पर तम को दूर करता है जो शुद्ध है और आलंब पद से आलंबित है नहीं है सबका आश्रय है आश्रित किसी का नहीं यहाँ आत्मरूप चंद्रमा का लौकिक चंद्रमा से व्यतिरेक सूचित किया है लौकिक चंद्रमा कला युक्त होने पर अंधकार को दूर करता है और क्षीण होने पर नहीं करता किंतु आत्मरूपम चंद्रमा इससे बिल्कुल उल्टा है। यह कला युक्त होने पर अंधकार को बढ़ाता है और क्षण फल होने पर उसका नाश करता है, एवं लौकिक चंद्रमा कलंक युक्त होने से अशुद्ध है, परंतु वह शुद्ध निष्कलंक है। यह आलंब पद विष्णु पद और आकाश में आलंबित रहता है, किंतु वह आलंब पद से निर्गत है, किसी का आश्रित नहीं। किसी वैलक्षण्य को सूचित करने के लिए तम पद दिया गया है। श्री तर्कवागीश जी ने इस पद को लौकिक चंद्रमा में भी लगाया है। कला भी क्षीणस्तमाम मसाम विवृधयः ताभिर्युक्तश्च येषाम तमसाम क्षत्तये। इस मत में एक पद का प्रधान चमत्कार नष्ट होता है, इसी के लिए कवि का सब प्रयत्न है अक्षरे युक्त को क्षतय के साथ लगाने के दुरान्वय और संकीर्णत्व दोष आते हैं, अतः यह अर्थ अस्वरा रसिक होने से त्याज्य है। कवि कथितम च इति, यहाँ पूर्व विहित का अनुवाद करना हो या विषाद विस्मय क्रोध दैन्य लाटानुप्रास अनुकंपा प्रसादन अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि हर्ष और अवधारण हो, वहाँ कथित पदत्व दोष नहीं होता, गुण होता है। जैसे उदेति इति यहाँ विहित का अनुवाद है, पहले वाक्य में ताम्रत्व की विधि है और दूसरे वाक्य में हस्तगमन रूप विधि का उद्देश्य बनाने के लिए वही ताम्रत्व का अनुवाद है। श्री तर्कवागीश जी ने पूर्वोक्त उद्देश्य प्रति निर्देश का प्रकरण में जो उस पद्य का समन्वय दिखाया है, वह इस मूल ग्रंथ से विरुद्ध है। इसके अनुसार यह पद्य उद्देश्य से प्रति निर्देश के पूर्वोक्त तृतीय भेद के अंतर्गत हो सकता है, अर्थात प्रथम भेद अंतर्गत में नहीं। हंत इति यहाँ विषाद है, चित्रम इति यहाँ विस्मय है, सुनयने यहाँ लाटानुप्रास है, नयने इति यहाँ अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है, संदिग्धत्वम इति यदि व्याजस स्तुति में पर्यवसान होता तो जो संदिग्धत्व गुण होता है, जैसे पृथुक इति यह किसी भिक्षुक की उक्ति है, हे राजन इस समय मेरा इस और उसका घर एक समान हो रहा है, आपके घर में पृथु बराबर बड़े बड़े कार्तस्वर यानी सुवर्ण के पात्र हैं और मेरा घर पृथुक यानी बच्चों के अर्थ स्वर का आस्पाद हो रहा है, अतः दोनों की पृथुक अर्थस्व पात्र हैं, एवं मेरा और आपका घर भूषित निःशेष परिजन है, आपके घर में निःशेष यानी सब परिजन भूषित यानी भूषण युक्त हैं और घर में मेरे सब लोग भू उषित यानी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, अर्थात आपका घर विशेष शोभित करेणुओं यानी हाथियों का गहन से भरा है और मेरा घर बिलसत्क बिल में रहने वाले चूहे आदि को से भरा है, मिट्टी से भरा है, अतः दोनों बिलसत्क रेणु गहन है। श्लेष के कारण यहाँ ब और व का भेद नहीं माना गया है। इसमें यद्यपि पृथुक इत्यादि विशेषण संदिग्ध है, तथापि ब्याज स्तुति अलंकार के कारण यह गुण निवास गुण है। प्रारंभ में राजा की प्रशंसा प्रतीति होती है, परंतु वन्य को निंदा व्यंग है। जो राजा अपने राज्य के निवासी ऐसे दरिद्रों की खबर नहीं लेता, वह निंदनीय ही है। वैयाकरण इति यदि कोई वैयाकरण वक्ता या श्रोता हो तो कष्टस्व और दुःश्रवत्व गुण होते हैं, जैसे दिधि, कोई पुरुष दिधिंग व्यविंग धातु और इट प्रत्यय के समान होते हैं, जो गुण और वृद्धि के पात्र नहीं होते, जैसे इनमें गुण और वृद्धि नहीं होती, इस सूत्र में निषेध हो जाता है। इस प्रकार बहुत से मनुष्य दयादाक्षिण्य इत्यादि गुण और वृद्धि यानी समृद्धि के पात्र नहीं होते और कोई भी कोई तो कोई प्रत्यय के सदृश होते हैं, जहाँ वे ब्रैकेट गुण वृद्धि ब्रैकेट बंद पास तक नहीं पटकते, जैसे कि प्रत्यय जिस किसी धातु अथवा प्रतिपादिक के सन्निहित होता है उसी की गुण वृद्धि को रोक देता है। उसी प्रकार कई पुरुष ऐसे होते हैं जिनके सन्निहित होने से उनके पास बैठने वाले को गुण वृद्धि नष्ट हो जाती है। उनकी स्वयं तो बहुत ही बात ही क्या, वे तो क्विप प्रत्यय की तरह सर्वथा नष्ट ही ठहरे। अत्र ही यहाँ दुर्बोध अर्थ होने के कारण कष्टत्व है, परंतु वक्ता वैयाकरण है, अतः दोष गुण हो गया है। इसी प्रकार वैयाकरण के बुद्ध श्रोता प्रगटवंत होने पर भी कष्टत्व गुण होते हैं। वैयाकरण श्रोता होने पर श्रवत्व दुश्रवत्व की गुण का उदाहरण देते हैं। अस्त्रमार्षम का दुश्रवत्व यहाँ गुण है, दोष नहीं। ग्राम्यत्व अधम पुरुषों की उक्ति में ग्राम्यत्व गुण होता है, यथा दोषो एसो एतद् सस्धर बिंब दृश्यते हैवंग विनपिंडम इव एते असुह समूह पतंत्या सासु दुग्धारा इव यह चंद्रमा मक्खन का गोला सा मालूम पड़ता है और इसकी किरणें दूध की धारे सी गिर रही है। यदि विदूषक की उक्ति है निरहेतु इति, यदि वस्तु प्रसिद्ध हो तो निरहेतुता को दोष नहीं माना जाता। जैसे संप्रति संध्या के समय चक्रवाकों का वियोग प्रसिद्ध ही है, कवि नाम इति, कवि संप्रदाय में जो प्रसिद्ध है उनमें ख्याति विरुद्धता गुण होती है। कवि संप्रदाय की कुछ प्रसिद्धियां बतलाते हैं। मालिन्यम इति, आकाश और पाप यद्यपि रूप वस्तु है किंतु कवि संप्रदाय में ये मलिन है। यश हास और को श्वेत कहते हैं, क्रोध और अपराध को लाल मानते हैं। नदी समुद्र आदि को भी लाल नीले आदि रंग के कमलों के का वर्णन करते हैं, यद्यपि चलते पानी में और खासकर समुद्र में इसका होना असंभव है। संपूर्ण जलाशयों में हंस आदि पक्षियों का वर्णन करते हैं, चकोरों का चंद्रिकापन और वर्षा काल में हंसों का मानसरोवर को चला जाना एवं कामिनियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना और उनके मुखवासित मध्य के द्वारा वकुल का पुष्पित होना माना जाता है। युवा और युवतियों के अंगों में हरों का होना और वियोग के संताप से उनके हृदय का फटना वर्णित होता है। कामदेव के धनुष की प्रत्यंचा भ्रमरों की पंक्ति मानी जाती है और उसके धनुष बाणों के फूल होते हैं एवं उसके बाणों में और स्त्रियों के कटाक्षों से युवक जनों के हृदय विद हो जाते हैं। कमल दिन में और कुमुद रात में खिलते हैं। शुक्ल पक्ष में चांदनी होती है और मेघों के गरजने पर मोरों का नाच होता है। अशोक का फल नहीं होता और चमेली बसंत ऋतु में नहीं फूलती एवं चंदन के पेड़ों पर फल फूल नहीं होते, इत्यादि बातें सत्व कवियों के निबंधों को देखकर जानना इनके उदाहरण आकर ग्रंथों में स्पष्ट है। धनुर्जय इति, ज्या यद्यपि धनुष की ही होती है तथापि धनुर्जयाह या जहाँ पर बोलते हैं वहाँ धनुष पद ज्या को धनुष पर चढ़ी हुई बतलाता है। जैसे पुरेति अत्र इति, यहाँ यद्यपि ज्या शब्द से भी काम चल सकता था किंतु धनुष पर चढ़ा होना धनुर्जय शब्द से बोधित होता है। भात इत्यादि, यहाँ कर्ण पद से आभूषण का कान में स्थित होना प्रतीत होता है, अन्यथा अवंश तत्व ही पर्याप्त था क्योंकि कान के ही भूषण को अवंश तत्व कहते हैं। इसी प्रकार श्रवण कुंडल सिर शेखर आदि पद जानना एवं इति, यदि केवल माला शब्द को तो फूलों की ही माला प्रतीत होती है तथापि पुष्पमाला पद में पुष्प शब्द पदों की उत्कृष्टता का बोधन करता है। इसी प्रकार हार शब्द से मोतियों का ही हार बोधित होता है तथापि जहाँ मुक्ता हार कहे वहाँ अन्य सब रंग रत्नों से अमिश्रित होना प्रतीत होता है। प्रयोक्तव्या इति, जो शब्द सत्कार्यों में स्थित हो वे ही इस प्रकार प्रयोग में लाने चाहिए, अप्रयुक्त जघन कांची आदि नहीं बनाने चाहिए। उक्तव इति, आनंद आदि में निमग्न मनुष्य की उक्ति हो तो न्यून पदत्व गुण होता है। जैसे गाढ़ इति, यहाँ क्षमाक्षरोलापिनी के पूर्व पिंड पद न्यून है, मास मा पिंड इत्यादि वाक्य है। क्वचित इति कहीं यह न्यून पदत्व न दोष होता है और न गुण, जैसे तिष्ठद इति उर्वशी जब स्कंद वन में लता रूप हो गई थी उस समय विरह व्याकुल राजा पुरुर्वा की यह उक्ति है, अर्थ मेरे ऊपर कोप करके अपने दिव्य प्रभाव से कदाचित यह अंतर ध्यान हो गई है। दीर्घम इति यह बहुत देर तक तो कुपित रहा नहीं करती, कदाचित स्वर्ग को उड़ गई हो, परंतु उसका मन तो मुझमें पूर्ण अनुरक्त है। मेरे सामने रहते हुए राक्षस भी उसका हरण नहीं कर सकते और वह एकदम अदृश्य हो गई है, यह बात क्या है। अत्र इति इस पद्य में प्रभाव पिहिता इसके आगे और भवेत इसके आगे नैत्यध ये पद न्यून है, किंतु इस वाक्य का व्यंग वितर्क नाम मक संचारी भाव इस न्यूनता से उत्कृष्ट नहीं होता, अतः इस गुण यह गुण नहीं है और दीर्घम न सा इत्यादि वाक्य से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा पूर्व वाक्य के ज्ञान का बाद भी स्फुटित रीति से हो जाता है, अतः इसे दोष भी नहीं कह सकते। उर्वशी के खोए जाने पर राजा पुरुर्वा ने अपने मन में अनेक विकल्प किए हैं। पहले यह सोचा कि शायद वह कुपित हो जाने के कारण दिव्य प्रभाव से अंतरहित हो गई हो, इसके अनंतर दूसरा भाव उठा कि अधिक समय तक तो कभी कोप किया नहीं करती, इससे पहली बात कट गई, वह कोप ने अंतरहित नहीं हुई है क्योंकि वह इतनी देर तक कभी कोप नहीं करती। यहाँ दूसरा वाक्य पहले का खंडन करता है, परंतु निषेध सूचक कोई शब्द नहीं है और दूसरा वाक्य हेतु रूप से गृहित है, परंतु उसकी हेतुता का सूचक भी कोई शब्द नहीं है। नैतत और यतः से पद यहाँ न्यून है, परंतु न्यूनता से न कोई उत्कर्ष होता है और न वाक्यार्थ समझने में कोई त्रुटि होती है। दूसरे वाक्य से पहले वाक्य का बाद स्पष्टम समझ में आ जाता है, अतः यह न्यून पदत्व यहाँ न दोष है और न गुण है। गुण इति अधिक पदत्व कहीं गुण होता है, उदाहरण किसी दुर्जन की दुष्टता का वर्णन करके उसका उपकार करने से रोकते हुए अपने मित्र के प्रति किसी महापुरुष की उक्ति है। आचार इति दुर्जन पुरुष सहसा उन अनर्थकारी कामों को भी कर बैठता है जिन्हें हम कभी सोचते भी नहीं, यह बात मैं नहीं जानता हूँ सो नहीं जानता हूँ, किंतु करूँ क्या, मेरा मन निष्ठुरता नहीं कर सकता। अत्र इति यहाँ न न जाने इससे आयोग का व्यवच्छेद होता है, फिर दूसरी बार आए हुए जाने का अहम एव जाने इस अर्थ में परिवसान होता है, अतः इससे अन्य योग व्यवच्छेद होने से अतिशय चमत्कार होता है। तात्पर्य एव शब्द तीन प्रकार का होता है, एक आयोग व्यवच्छेदक, दूसरा अन्य योजक व्यवच्छेदक, तीसरा अत्यंत योग व्यवच्छेदक। आयोगमन्ययोगम च अत्यन्तायोगमेव च व्यवच्छिदनति धर्मस्य एवकारिस्त्रिधामतम। विशेषण में लगा हुआ नियम सूचक एवं शब्द वस्तुगत धर्म के आयोग का व्यवच्छेद करता है, जैसे किसी ने कहा शंखः पांडर एव, विशेष भूत पांडर शब्द के आगे एवं शब्द पढ़ा है, अतः शंख रूप वस्तु के शुक्ल गण के आयोग अर्थात असंबंध को दूर करता है। शंख से में शुक्ल वर्ण के संबंध का जो अभाव संभावित था वह इससे दूर किया जाता है। शंख श्वेत की ही होता है, अर्थात शंख में श्वेत गुण का संबंध होता है, इसमें श्वेत गुण का आयोग नहीं होता, सर्वथा योग ही रहता है। इसी प्रकार विशेष्य वाचक पद का आगे आया हुआ एवं शब्द धर्म में अन्य योग का व्यवच्छेदक रहता है, जैसे पार्थ एवं धनुर्धर। यहाँ विशेष पद के आगे नामक एवं शब्द आया है, इससे धनुर्धर रूप धर्म का अन्य योग व्यवच्छिन्न होता है, अर्थात अर्जुन के सिवा अन्य पुरुषों के में धनुर्धरत्व का योग को यह नियम दूर करता है। इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि अर्जुन के सिवा और किसी में धनुर्धरत्व नहीं है। धनुर्धारी यदि कोई है तो अर्जुन ही है, अन्य नहीं। एवं क्रिया के आगे आया हुआ एव पद अत्यंतान योग व्यवच्छेदक होता है, जैसे नीलम कमलम भवत्येव। इस नियम में पूर्व दो नियम की तरह यहाँ नीला धर्म का न तो आयोग छेद व्यवच्छेदक होता है न अन्य योग व्यवच्छेदक, किंतु कमल में नील धर्म का अत्यंत आयोग दूर किया जाता है। इसका यह तात्पर्य है कि कमल में नील रूप धर्म का अत्यंत असंबंध नहीं होता, उसका भी संबंध होता है, किंतु यह बात नहीं है कि नीले के सिवा और किसी गुण का कमल में संबंध होता ही नहीं। प्रकृत वाक्य न न जाने में यद्यपि साक्षात एव शब्द नहीं पढ़ा जाता, तथापि नये द्वयस्य प्रकृतार्थे ढंढस्य सूचकत्वम्। इस नियम के अनुसार दो न शब्द होने से एवकार के अर्थ में ही पर्यवसान होता है। न न जाने का जाने एवं यही अर्थ होता है। न जाने पद में ज्ञा धातु का अर्थ ज्ञान है और उसके आगे आए ऐसा तिंग प्रत्यय की आश्रय में लक्षणा है। अतः नैयायिकों के मतानुसार यहाँ तद विशेषयक ज्ञान आश्रय एवा अहम ऐसा शब्द बोध होता है। यहाँ विशेषण ज्ञान आश्रय के आगे एवं शब्द आया है, अतः आयोग छेदक है। इससे यह अर्थ होता है कि मुझमें इस विषय के ज्ञान का असंबंध नहीं है, अर्थात मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, यह बात नहीं जानता हूँ। अब फिर दूसरी बात जो जाने पद आया है उससे अहम मेव जाने यह अर्थ निकलता है। इस वाक्य में एव शब्द विशेष्य के आगे आया है, अतः अन्य योग व्यवच्छेदक है। यह तथ्य निकलता है कि मैं ही जानता हूँ, मेरे सिवा अन्य पुरुष में इसके ज्ञान का संबंध नहीं है। यहाँ वक्ता के इन वाक्यों से प्रतीत होता है कि वह प्रकृत दुष्ट की दुष्टता को केवल जानता ही नहीं, किंतु उनमें प्रत्येक मर्म से अच्छी तरह परिचित है, किंतु फिर भी दुष्ट के साथ स्वयं दुष्टता करना या उसके प्रति उपकार को छोड़ देना नहीं चाहता। इससे वक्ता अत्यंत उदारता, दृढ़ता, धीरता और महापुरुषता प्रतीत होती है। यहाँ विच्छति विशेष है, समाप्त इति कहीं समाप्त पुनरातत्व न दोष होता है न गुण, जैसे पूर्वोक्ता अन्यस्ता इत्यादि। वहाँ पूर्वार्ध में वाक्य समाप्त हो गया था, फिर भी उत्तरार्ध में उसे ग्रहण किया है। इससे वह समझना चाहिए कि यदि विशेषण मात्र में उसका उत्पादन किया जाए तो समाप्त पुनरातत्व दोष होता है, वाक्यांतर के उपादान में नहीं। गर्भितम इति गर्भितत्व कहीं गुण है, जैसे दिंग मातंग इति जिसकी चार सीमाएं चारों दिग्गजों तक पहुंची हुई है, वह संपूर्ण पृथ्वी जीती जाती है और वह सब जीती हुई देखो कहते कहते हमारे रोमांच हो रहे हैं ब्राह्मण को दे दी जाती है। यह अद्भुत कथा जिनसे उत्पन्न हुई और जिनके साथ ही अस्त हो गई है, और क्या कहें, उन अद्वितीय अद्भुत वीर परशुराम जी को नमस्कार है। अत्र इति यहाँ वदंतः इत्यादि वाक्य बीच में पढ़ने से चमत्कारी अतिशय होता है। वक्ता के रोमांच से अद्भुत रस का परिपोष और उसमें उसकी परशुराम जी की भक्ति ज्ञात होती है। पतद इति कहीं पतत प्रकर्षता भी गुण होती है, और जैसे चंजद्भूत इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में यहाँ चतुर्थ चरण में कमल कोमल अर्थ है, अतः कठोर वर्णों का त्याग गुण हो सकता है। क्वचिद इति कहीं व्यभिचारी भाव का स्व शब्द से कथन करना दोष नहीं माना जाता है, किंतु यह बात वही होती है जहाँ अनुभाव और विभाव के द्वारा रचना करना उचित न हो। यत्र इति यहाँ अनुभाव के और विभाव के द्वारा प्रतिपादन करने से उस भाव की स्पृष्टता प्रतीत नहीं हो सकती, और जहाँ विभाव अनुभाव के द्वारा की गई पुष्टि का न होना ही उचित है, वहाँ व्यभिचारी भाव को उसी के वाचक शब्द से प्रतिपादन करना दोषदायक नहीं होता, जैसे औत्सुक्य इति प्रथम समागम से उत्कंठा के कारण शीघ्रता करती हुई और स्वाभाविक लज्जा के कारण पीछे हटती हुई, फिर कुटुंबी और स्त्रियों के द्वारा समझा बुझाकर सामने लाई गई एवं आगे खड़े वर यानी विरूपाक्ष को देखकर भयभीत हुई और विहसित बदन महेश्वर से आलिंगन रोमांचित पार्वती आप सबका कल्याण करें। अत्र इति औत्सुक्य का अनुभव त्वरा हो सकती है, किंतु उसके द्वारा यहाँ यदि प्रतिपादन किया जाए तो औत्सुक्य की प्रतीति जल्दी नहीं हो सकती, किंतु त्वरा तो भयादिक से ही होती है, वह केवल औत्सुक्य का ही कार्य नहीं है, तह उससे औत्सुक्य रूप कारण का बोध कारणांतर के अनुसंधान करने पर ही हो सकता है, शीघ्र नहीं। इसी प्रकार व्यावर्तन क्रोध आदि का कारण भी हो सकता है, यतः यद्यपि यह लज्जा रूप संचारी भाव का अनुभव है तथापि लज्जा शब्द बिना कहे ठीक प्रतीत नहीं होती। साध्वस और ह्रास को यदि विभाव आदि के द्वारा पुष्ट किया जाए तो वे प्रकृत रस में प्रतिकूल हो जाएंगे, क्योंकि उस दशा में से वे अभयानक और हास्य रस को पुष्ट करने लगेंगे, श्रृंगार की प्रतीति नहीं करा सकेंगे, अतः उन्हें भी स्वशब्द से कहना दोष नहीं प्रतियुत उचित होता है। संचार्य इति विरुद्ध रस से संचारी आदि भावों का यदि बाध्य रूप से कथन किया जाए अर्थात कहकर फिर उन्हें प्रकृत रस से किसी भाव से दबा दिया जाए तो वह कथन दोष नहीं गुण होता है, जैसे कोकार्यम इत्यादि। पूर्वोक्त पद्य में वितर्क मति शंका और धृति ये सब यद्यपि प्रशम के अंक हैं, श्रृंगार के विरोधी शांत रस के पोषक हैं, तथापि यहाँ उनके आगे आए हुए अभिलाष से अंगभूत औत्सुक्य स्मृति दन्य और चिंता नामक भाव से उनका तिरस्कार होता है, अर्थात वे इनमें दब जाते हैं और अंत में चिंता ही प्रधान रहती है, अतः विप्रलंब श्रृंगार रस पुष्ट होता है। विरोध इन इति यदि विरोधी रस या भाव स्मरण किया गया हो अथवा समानता से कहा गया हो यद्वा किसी प्रधान रस आदि में दो विरोधियों को अंग बना दिया गया हो तो परस्पर विरोध दोषदायक ही माना जाता है। क्रम से उदाहरण अयम इति यहाँ आलंबन का विच्छेद हो जाने के कारण तद विशेषक रति रस रूप नहीं हो सकती, अतः स्मर्य स्मर्यमाण रति के जो अंग है उनसे शोक की उदीप्ति होती है, इसलिए वे करुण रस के ही अनुकूल पड़ते हैं, वहां श्रृंगार स्मर्यमाण है, अतः प्रकृत करुण रस के साथ उसका विरोध नहीं है। साम्य से विरोध की विवक्षा का उदाहरण देते हैं, सराग्य इति जो राग क्रोध या अनुराग से उत्पन्न नेत्र आदि की लाली से युक्त है और जिसके कारण पसीना छूट रहा है, तो जिसके देह से पसीना निकल रहा है, करतल का आघात से पृथ्वी उरु स्थल को जिसके कारण या जिसने ध्वनित किया है एवं जिसके कारण अथवा जिसने दांतों से ओठ दबाए हुए ऐसी रूस से राजा लोग इसे इस प्रकार आक्रांत हुए हैं जैसे अति प्रौढ़ काम आतुर प्रियतमा से होते हैं। क्रोध और नायिका दोनों पक्ष में उक्त विशेषण श्लिष्ट है, पसीना आदि क्रोध से भी उत्पन्न होते हैं और नायिका के देह में यही सात्वादिक विकार रूप होते हैं। यहाँ क्रोध के पक्ष में तृतीयांत अन्य पदार्थ मानकर बहुव्रीहि समास होता है और नायिका के पक्ष में षष्ठ्यंत मानकर सूतम धनम धर्म त्वयम् यता यस्या वा इत्यादि विग्रह होता है। यत इति यहाँ वीर रस का संचारी क्रोध वर्णनीय है, परंतु वीर का विरोधी श्रृंगार साम्य से विवक्षित है। राग प्रस्वेद तरुतांडन उरुतांडन ओष्ठ निष्पिंडन आदि जो क्रोध के अनुभव हैं, वे ही श्रृंगार के भी अनुभव हैं। अनुभवों की समानता से श्रृंगार विवक्षित होता है, अतः दोष नहीं। एकम इति ध्यान करने के लिए मोच नीच लेने से एक नेत्र तो प्रायः मुकुलित और दूसरा पूजन करने को आई हुई पार्वती के मुख कमल और स्तनों पर संलग्न एवं तीसरा नेत्र धनुष चढ़ाए हुए कामदेव के ऊपर क्रोधानल से उदीप्त। इस प्रकार समाधि के समय भिन्न भिन्न रसों में निमग्न शंकर के तीनों नेत्र तुम्हारी रक्षा करें। विवाह होने से पूर्व पार्वती शिव जी के पूजन के लिए प्रतिदिन आया करती थी। उसी समय देवराज इंद्र की आज्ञा से कामदेव ने शिव जी के ऊपर चढ़ाई की थी। यहाँ शांत श्रृंगार और रौद्र तीनों रस परस्पर विरोध हैं, किंतु वे सब यहाँ प्रधान भूत शंकर विषयक रति भाव के अंग है, अतः कोई दोष नहीं। दूसरा उदाहरण क्षिप्त इति, जिनके नेत्र कमल आंसुओं से युक्त हैं, उन त्रिपुरासुर की सुंदरियों ने नवीन अपराध करने वाली कामी के समान जिसको अपना हाथ छूते समय झिटक दिया और जोर से पाट कर हटाने पर भी जो वस्त्र से छोर को पकड़ रहा है, केशों को स्पर्श करते समय जिसे हटा दिया है एवं पैरों पर पड़ा हुआ जो होने पर भी जिसे संभ्रम के कारण नहीं देखा, वह शिव जी के बाण से उत्पन्न अग्नि को आपकी रक्षा करे। त्रिपुर दाह से के समय स्त्रियों ने उक्त प्रकार से हाथ में कपड़ों में और केशादिकों में लिपटते हुए अग्नि को हटाया है। क्रोध से भरी नायिका भी इसी प्रकार नायक को झिटक कर हटाती है। अत्र इति, इस पद्य में कविनिष्ठ शिव विषयक भक्ति प्रधानतया व्यंजमान है, उसका पोषक है। यहाँ भगवान शंकर का त्रिपुर ध्वंस के प्रति उत्साह किंतु अनुभाव विभाव के द्वारा पुष्ट नहीं है, अतः रस स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाया, केवल भाव रूप ही रहा। इसी उत्साह भाव का पति के मरने पर अग्नि की आपत्ति में पड़ी हुई स्त्रियों के वर्णन से प्रकट हुआ करुण रस अंग है, और इस करुण का काम्यो इस साम्य के बल से आया हुआ श्रृंगार अंग है। यहाँ क्षिप्तो हस्ता वलंगन इत्यादि पदों से जो कार्य दिखाए हैं वे अग्नि और कामी के समान है, अतः इस समानता से काम्य इस उपमा के कारण प्रतीत हुआ श्रृंगार प्रकृत करुण का अंग है। एवंच इति, इस प्रकार करुण भी अंतिम आस्वाद का विषय नहीं है, वह भी उत्साह का अंग है। इसी कारण करुण और श्रृंगार दोनों ही उत्साह पोषित भगवत विषयक रति के उपकारक हैं, अतः यहाँ योग पद्य होने पर भी विरोध नहीं, क्योंकि ये दोनों रति भाव के अंग है। ननु इति प्रश्न, रस तो विभाव आदि समूह विषयक ज्ञान रूप ही होती है, अतः पहले इसे समूह आलंबन ज्ञान रूप सिद्ध कर आए हैं और इसे पूर्ण घन और आनंद स्वरूप मानते हैं। रस अविकल सांद्रानंद स्वरूप होता है, फिर एक रस का तादृश सदृश दूसरे रस के साथ विरोध कैसे संभव है? एक वाक्य से उक्त स्वरूपों का निवेश या एक ही वाक्य से ऐसे दो रसों का एक समय से प्रादुर्भाव हो नहीं सकता, फिर एक दूसरे का उपमर्द कैसे कर सकता है? जब दोनों एक समय में उपस्थित हों तभी एक दूसरे को बांध सकता है, सो तो यहाँ असंभव है। नाप इति, दो रसों का अंगांगी भाव भी नहीं हो सकता। जब दोनों पूर्ण हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक दोनों ही पृथक पृथक विश्राम होंगे। उत्तर, सत्यम इति, बात तो ठीक है, अतएव जो रस प्रधान नहीं होते, जिनमें स्वतंत्रता से पूर्ण विश्रांति नहीं होती और जो पूर्ण रस और पूर्ण भावों से विलक्षण नहीं होते, उन्हें प्राचीन लोग संचारी रस से के नाम से व्यवहार करते हैं। अस्मार इति, हमारे साहित्य दर्पणकार के पितामह के भाई श्री चंडीदास जी और उसके खंड रस के नाम से कहते हैं, उनकी यह कारिका है। अंगम इति, अंगी अर्थात रसादिक यदि दूसरे रस में अंगभूत हो जाए या बाध्य होकर आए अथवा संसर्गी हो तो वह पूर्णतया आस्वादित नहीं होता, अतः उसे खंडरस कहते हैं। ननु इति प्रश्न, आद्य इत्यादि पूर्वाचार्यों के वचन में जब यह स्पष्ट है कि श्रृंगार रस का करुण विभत्स रौद्र वीर भयानक के साथ विरोध है। फिर निम्नलिखित कपोलों इत्यादि पद्य में श्रृंगार और वीर रस का समावेश कैसे किया। कपोल इति हाथी के बच्चे के दांत के समान कांति युक्त गौर वर्ण जिसके कपोल के में काम से दीक्षित और प्रवृद्ध रोमांच हो रहा है, उस सीता के मुख कमल को देखते हुए और बार बार राक्षसों की सेना के कलकल शब्द को सुनते हुए श्री रामचंद्र जी अपने जटाजुट की ग्रंथि को संभाल कर बांध रखे हैं। यहाँ सीता जी को आलम्बन करके श्रृंगार और राक्षसों को आलम्बन करके विभत्स एक ही में समाविष्ट किया है। उत्तर अत्रोच इति यहाँ रसों का विरोध या अविरोध तीन प्रकार से माना जाता है। कोई रस तो ऐसे है जो एक आलम्बन में विरुद्ध होते हैं, कोई आश्रय में विरुद्ध होते हैं और कोई एक दूसरे के बाद आगे पीछे बिना व्यवधान के आए हुए आने से विरुद्ध होते हैं। उनमें से वीर और श्रृंगार के आलम्बन होने पर विरुद्ध होते हैं, जिसे देखकर श्रृंगार उत्पन्न हुआ है। यदि उसी को आलम्बन बनाकर वीर रस पैदा हो तो विरुद्ध समझा जा सकता है, किंतु प्रकृत पद्य में ऐसा नहीं है। यहाँ तो श्रृंगार का आलम्बन सीता है और वीर रस का राक्षस लोग। तथ इति इसी प्रकार हास्य रौद्र और विभत्स रस के साथ संभोग श्रृंगार का आलम्बन भी एकता में विरोध होता है। वीर करुण रौद्र और भयानक आदि के साथ विप्रलम्ब श्रृंगार का बोध भी इसी प्रकार जानना वीर और भयानक रसों का एक आश्रय में समावेश करना विरुद्ध है। निर्भय और निशंक उत्साही महापुरुष वीर होता है, उसमें यदि भय आ जाए तो फिर वीरता कहाँ। यहाँ च शब्द से पूर्वोक्त आलम्बन नैक्य का ग्रहण है। नैर अंतर्य और विभावों की एकता के शांत और श्रृंगार विरुद्ध होते हैं। वीर रस का अद्भुत और रौद्र के साथ उक्त तीनों प्रकार से विरोध नहीं है, एवं श्रृंगार का अद्भुत के साथ तथा भयानक का विभत के साथ किसी भी प्रकार से विरोध नहीं है। एवं च इति इस कारण यदि वीर रस को नायक में स्थित कहा गया हो और भयानक को प्रति नायक में स्थिर, तो इन दोनों का आश्रय भिन्न हो जाने से कोई विरोध नहीं होता। यश्च इति नागानंद नाटक में परशम के पात्र जिमूतवाहन का मलयवती में जो अनुराग दिखाया गया है, वह अहोगीतम इत्यादि के द्वारा बीच में अद्भुत रस का निवेश कर दिया गया है। अतः शांत और श्रृंगार का नैरंतर्यकृत विरोध नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना विरुद्ध रस का विभावादिकों की अदोषता दिखाते हैं। पंडोक्षासमम इत्यादि पद्य में जो पांडुरता आदि का वर्णन है, वह करुण विप्रलम्ब का भी अंग हो सकता है, अतः विरोध नहीं है। जहाँ विरोधी रस के असाधारण अंगों का वर्णन हो, वहीं दोष माना जाता है, उभय साधारण अंगों का वर्णन में नहीं। यहाँ सब जगह रस पद से स्थायी भाव का ग्रहण जानना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रस एक तो नायक आदिकों में रहता ही नहीं, यह सामाजिकों में ही रहता है। दूसरे अखंड चिदानंद स्वरूप रस में विरोध की संभावना ही नहीं होती। अनुकार इति अनुकरण यदि किया हो तो कोई भी दोष नहीं होता। जैसे एस इति यहाँ दृश्यश्च वन शब्द इंद्र के लिए अप्रयुक्त है, परंतु अनुकरण के कारण दोष नहीं है। अस्यम इति इसी प्रकार औचित्य के अनुसार अन्य दोष के अदोषत्व गुणत्व और अदोष गुणत्व का निर्णय अन्यत्र भी बुद्धिमान लोग स्वयं विचार के से कर सकते हैं। इति सप्तमः परिच्छेदः इस प्रकार साहित्य दर्पण के सातवें परिच्छेद की समाप्ति हुई।